श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। श्याम जय जय श्री राधे। श्याम जय जय श्री राधे। श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए, सब लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री जन्माष्टमी में बहुत बहुत स्वागत है। श्री गोवर्धन कृषि क्षेत्र में, श्री वृंदावन धाम में, श्री गोवर्धन धाम में आप सबका स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि हम हमारे उपवास के आखिरी 2 घंटे में आ गए हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि कृष्ण कथामृत का पान करके प्यास और भूख को भूल जाएं। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, सब लोगों की मिलकर, आपके सहायता से और आपकी प्रार्थना के आधार पर। श्री कृष्ण जन्म के इस पावन पर्व पर हम सब श्री कृष्ण भगवान की याद करने का, चिंतन करने का और स्मरण करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण भगवान का अवतरण हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी है, जन सामान्य के लिए, सब जनता के लिए एक परम उद्धार का एक प्रयोजन काल है। इसलिए आप सबको बधाई है कि आप सब लोग इतनी देर तक यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबको धन्यवाद भी है और आप सबको बधाई भी है जन्माष्टमी की और आपके उत्साह के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमारी चेतना जो है वो श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रार्थना के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन महान व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन वो व्यक्ति बड़ी दयालु होती है, बड़ी कृपामय होती है, करुणामय होती है। जो भक्तगण उनके सामने आकर प्रामाणिक हृदय से प्रार्थना करते हैं उनको भगवान वरदान देते हैं, उनको भगवान आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए आप सब लोग एक बार जोर से प्रार्थनामय भावना से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो सवेरे की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम सवेरे श्री कृष्ण भगवान के अनेक विवाहों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ, जाम्बवती सत्यभामा का विवाह और उसके बाद जमुना के विवाह तक हमने चर्चा किया, और उसके साथ 3 करोड़ राजा बिमल के कन्याओं का भी विवाह का वर्णन सुबह हुआ। तो अभी 3 करोड़ और 4 रानियों के पश्चात 3 करोड़ 5वीं रानी का विवाह का प्रसंग भी आरंभ हो रहा है। हरे कृष्णा। तो उस रानी का नाम है मित्रविंदा, और वो मित्रविंदा देवी जो है वो आज के उज्जैन यानी कि उस समय के अवंतीपुर से है। और मित्रविंदा के 2 भाई थे, विंध्य और अनुविंध्य। और ये तीनों विंध्य, अनुविंध्य और मित्रविंदा, ये तीनों श्री कृष्ण की जो बुआ थी, बुआ यानी आत्या, इसका नाम था राजादि देवी, वो वसुदेव की बहन थी, कुंती की बहन थी, उनके ये तीन संतान थे, विंध्य अनुविंध्य और मित्रविंदा। उनका स्वयंवर रचाया गया और न जाने क्यों ये सब भगवान के भाई ही थे। शिशुपाल भी भगवान का भाई था, विंध्य अनुविंध्य भी भगवान के भाई हैं, कि नहीं भगवान के दुश्मन निकले। हाँ, इन्होंने भगवान से उनका विवाह न करना चाहा, लेकिन मित्रविंदा बचपन से ही भगवान सर प्रेम करती थी कृष्ण भगवान पर, और विंध्य अनुविंध्य ने स्वयंवर रचाया तो मित्रविंदा का भाव जानते हुए श्री कृष्ण भगवान स्वयंवर में आए और मित्रविंदा को उठा कर ले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। वो विवाह जो है ना, वो छह प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार का विवाह होता है राक्षसी विवाह, उसमें वर जो है वो बल से वधु को उठा कर ले जाता है, लेकिन उसको भी बोनाफाइड माना गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मित्रविंदा को भगवान उठा कर ले जाते हैं। ऐसा कहा गया कि जब भी मित्रविंदा छोटी थी तब से भगवान के ऊपर उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, तो उसकी सहेलियां कहती थी कि ऐसा प्रेम मत किया कर, ये तुम्हारे परिवार का लड़का है, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्ते में आता है, ऐसा संबंध अच्छा नहीं है। फिर भी मित्रविंदा का हृदय जो है वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से आ गया था। और अब ये कब हुआ था, क्योंकि भक्तगण जो है वो पूछते हैं कैसे कैसे हुआ मित्रविंदा का हृदय भगवान के ऊपर कैसे आ गया। तो कारण यह है कि भगवान जब ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए और फिर मथुरा में वसुदेव जी को मिले, तो उन्होंने ये मंतव्य प्रकट किया कि आप लोगों को तो गुरुकुल भेजना बाकी रह गया, आप बड़े हो गए, अभी गुरुकुल भेजना जरूरी, हमारा कर्तव्य है माता पिता के रूप में। तो वसुदेव और देवकी ने सांदीपनि मुनि के पास में उज्जैन में उनको भेजा, और कहते हैं 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं को प्राप्त किया, जो आमतौर पर सब लोग 12 साल तक पढ़ते हैं 18 विद्याओं को, 64 कलाओं को समझने में, तो भगवान ने 64 दिन में सारी कलाएं, 64 कलाएं और 18 विद्या पूर्ण आत्मवत कर ली। उस समय विद्यार्थी दशा में ये जो बुआ थी भगवान की, राजादि देवी, वो अपने घर कृष्ण बलराम को ले गई थी, और तब से मित्रविंदा ने जब उनको देखा तब से हृदय में जो प्रेम उमड़ा वो कभी रुका ही नहीं, और इसलिए उसके मंत को जानते हुए कृष्ण भगवान ने उसके स्वयंवर में उसको ज़बरदस्ती उठा लिया। इस प्रकार से भगवान ने पांचवें पटरानी के साथ विवाह किया। उसके बाद भगवान कौशल देश गए, फिर रामायण में कौशल देश का संबंध आता है, कौशल्या देवी वहाँ से है। रामायण में कैकेय देश का संबंध भी आता है, क्योंकि कैकेयी वहाँ उस देश की है, कहते हैं कैकेय मतलब रशिया, रशिया देश। तो एनीवेज कौशल देश में उस समय राजा नग्नजीत थे और उनकी कन्या का नाम था सत्या, कभी कभी लोग उनको नग्नजीति भी पुकारा करते थे। ये नग्नजीति बालकपन से भगवान से अपना हृदय दे चुकी थी और भगवान की प्राप्ति के लिए सारे वस्तुओं को उसने त्याग कर दिया था। एक बाल्यावस्था में कुछ खिलौने होते हैं या और कोई बड़े होने के बाद कुछ वस्तु होती है, कुछ चाहत होती है, लेकिन सभी वस्तुओं को इसने त्याग दिया था और केवल व्रतस्थ थी वो, हमेशा व्रत में रहा करती थी। जो इच्छित वर, इच्छित पति प्राप्त करने के लिए होते हैं वो सारे व्रत करने में वो मग्न थी। और ऐसे कहते हैं कि जब वो आकाश में किसी घने बादल को देखती थी तो उसको कृष्ण की याद आती थी, और जैसे बादल की वर्षा होती थी वैसे इसके आंखों से वर्षा होती थी प्रेम की, अश्रुओं की, जिसके वजह से जहां पर भी वो खड़ी है वहां पर सारा आसमान तो गीला हुआ करता था। तो नग्नजीति का ये जो प्रेम का भाव है उसके पिताजी को पता था, और अपनी बेटी का प्रेम श्री कृष्ण पर है इस भावना को देखकर उसके पिताजी को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्साह हुआ, और ऐसा स्वयंवर रचाया उन्होंने कि 7 उनके पास में बैल थे और उतने भयंकर बैल थे वो कि उनको किसी भी मनुष्य का जो गंध है ना वो भी उनको सहन नहीं होता था। तो उन्होंने ऐसा प्रण रखा कि ये 7 भयंकर बैल जो है उनको कोई वश में करेगा वो मेरे पुत्री का हाथ विवाह में स्वीकार कर सकता है। तो इस प्रण को जीतने के लिए, क्योंकि नग्नजीत सत्या देवी जो है थी बड़ी सुंदर थी, वो उसका सौंदर्य बड़ा प्रसिद्ध था, सब लोग उसको पत्नी के रूप में पाने के अभिलाषा से आए, और सभी राजकुमार जब भी इन 7 बैलों को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास करते थे, कर रहे थे और करते थे, तो बैल उनको खदेड़ देते थे, और अधिकतर राजकुमार जो है वह जख्मी होकर अपने हाथ पाँव का फ्रैक्चर करके घर पे चले गए। जो भी आया उनको बैल ने ऐसे खदेड़ दिया, क्योंकि उनको मनुष्य का गंध सहन ही नहीं होता था। तो बड़े बड़े वीर पुरुष आए थे लेकिन वो बैल के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। तो फिर श्री कृष्ण भगवान को ये पता चला कि नग्नजीती सत्या देवी उनकी अभिलाषा रखती है, तो सोचा कि हम चलते हैं उनके पास। तो भगवान कौशल देश गए, और कौशल देश जाने के बाद में उनका बड़ा सत्कार किया गया, क्योंकि भगवान का गौरव सबको पता था। राजा नग्नजीत बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने भगवान का स्वागत किया, उनको सिंहासन में बिठाया, उनकी आरती पूजा किया, पादक शालन किया, उनको अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन दिए, स्तुति किया उनका पत्नी के साथ बैठकर। और फिर भगवान ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय राजकुमार किसी से भिक्षा नहीं मांगते, ये उनके क्या कहते हैं अहम या उनके स्वाभिमान के खिलाफ है। और जो क्षत्रिय किसी से भिक्षा मांगता है कि याचना करता है उसकी जग निंदा करता है, सारे संत पुरुष अच्छे जन उनकी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी कन्या के लिए आपके लिए विनती करता हूँ कि आपकी कन्या के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। और आपने जो प्रण रखा है वो मुझे इच्छा नहीं कि वो प्रण का पालन करें, मुझे ऐसे ही बिना किसी कर या बिना किसी नियम के आपकी कन्या का हाथ चाहिए। लेकिन राजा कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि मैंने बहुत सालों के पहले से मैंने ये प्रण रखा है कि 7 बैलों को नियंत्रित किया जाए, और ये प्रण में कई लोगों ने भाग लिया है, और कई लोगों ने अपने हाथ पाँव तोड़ के घर पे चले गए वो निराश होकर, परास्त होकर। तो उनके सामने ऐसा करना अच्छा नहीं कि आपके लिए मैं कंसेशन दे दूँ और ऐसे ही मेरी बेटी का हाथ दे दूँ। तो भगवान समझ जाते कि अपने प्रण से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ये प्रण के बिना अपनी कन्या को देना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। उसी समय वैसा क्या ऐसे लिखा है कि भगवान जो अपना वस्त्र जो है वो ऐसा कमर पे बांधते हैं, जैसे एक मल्ल होता है ना कोई तो कुश्ती खेलने के लिए अपना उत्तरीय वस्त्र निकाल कमर पे बांध देता है, जैसे भगवान ने कालिया को मारने के लिए ऐसा वस्त्र बांध के फिर बाजुओं को ताल ठोकते हुए जमुना जी में छलांग लगाई थी, वैसे भगवान जैसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए मल्ल युद्ध करने के लिए, और वो बांध कर उन्होंने जिस अखाड़े में उन 7 बैलों को रखा था उसमें भगवान ने प्रवेश किया, और एक ही साथ में भगवान ने 7 रूप में अपने आप को विभाजित कर दिया कुछ ही क्षणों में, सबके सामने भरी सभा में। ऐसे नहीं कि केवल सत्या देख रही है, कोई और कोई देख रहा है, राजा देख रहा है, भरी सभा के सामने उन्होंने अपने आप को 7 रूप में विस्तारित कर दिया। आचार्य बताते हैं इसका कारण क्या है, क्योंकि भगवान ने इसके पहले कई शादियां कर चुके, भगवान 3 करोड़ तो शादियां की तो वो गुप्त रूप में की थी, लेकिन 5 शादियां जो मैंने बताई वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो सत्या के मन में ऐसा संदेह ना हो जाए कि क्या ये अकेले रहेंगे तो हमको कितना समय देंगे, अगर उसके पास में होते मेरे पास कैसे होंगे, ये उनका संदेह को निकाल देने के लिए उन्होंने ये दिखाया कि मैं हर पत्नी के साथ रहूंगा और हर समय अपनी पत्नी को संग दूंगा, किसी को अपने संग से वंचित नहीं करूंगा। ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने 7 रूप में अपने आप को विभाजित किया और 7 बैलों को कुछ ही क्षण में दोरी से नियंत्रित कर दिया। वो 7 बैल जो थे वो विश्व प्रसिद्ध थे, उनकी शक्ति और उनकी जो बल था वो विश्व प्रसिद्ध था, उनका सारा घमंड भगवान ने चूर कर दिया, और उनके नाक से दोरी डालकर 7ों को ऐसे ले खींच कर लेके आए वो जैसे कोई बच्चा खिलौना लेकर आता है। जैसे ही 7 बैलों को उन्होंने नियंत्रित किया तो तुरंत राजा नग्नजीत अपनी कन्या सत्या देवी को लेकर आए, जो सुशोभित थी, अलंकार से सुसज्जित थी, सालंकृत, सुवस्त्र पहनकर सुंदर श्रृंगार करके वो तैयार थी वर वधु बनकर, उसको पिताजी लेकर आए उनकी माता के साथ और सबके सामने उन्होंने भगवान को वरमाला पहनाई और भगवान ने उसका हाथ अपने हाथ में स्वीकार किया। अभी मैं सुबह आपको बता रहा था कि दहेज क्या होता है। हाँ, तो राजा नग्नजीत ने बड़े प्रेम से अपने दिव्य और श्रेष्ठ जमाई श्री कृष्ण भगवान को क्या दहेज में दिया। भाई दहेज का कंसेप्ट क्या होता है? दहेज कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो कलयुग में ज़बरदस्ती करते इसलिए वो बुरी हो गई है, लेकिन पुराने ज़माने में जैसे ही बेटी का विवाह होता था बड़े प्रेम से लड़की का पिता अपने जमाई को बड़े प्रेम से दान दिया करता था। उसको कोई झगड़ा, कोई डिमांड, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती थी, दिल से हृदय से अपने बेटी के प्रेम की वजह से जहाँ बेटी रहने जा रही है वहाँ पर वो अनेक चीज़ें भेजते थे। भैया सुनिए क्या क्या दिया सत्या देवी के लिए उसके पिताजी ने। सबसे पहले 10,000 गायों को दान दिया, अति सुंदर अति श्रेष्ठ जाति की, अलंकार के साथ, जिनके सिंगों पर वो क्या कहते हैं ना कैप, टोपियाँ पहनी हुई है सोने की टोपियाँ, उनके पैरों में घुंघरू है, उनके शरीर पर मखमल से जरी लगाया हुआ चादर लगाया गया है, उनके पूंछ पर सोने और चांदी के गहने लगाए गए हैं, उनके गले में सोने की घंटा है, ऐसे अलंकार से सुशोभित 10,000 गाय दिया उन्होंने। उसके साथ श्रृंगार के साथ 3,000 दासियों को दिया उन्होंने। पुराने जमाने में रिवाज था अपने बेटी के साथ में उनकी सखियां जो है हजारों उसकी संख्या में अलंकार के साथ में वो पति के घर में जाया करती थी, अपने बेटी के पति के घर में। उसके साथ उन्होंने 9,000 हाथी भेंट में दिए श्रेष्ठ जाति के, उससे 100 गुना यानी 9,00,000 रथ दिए उन्होंने, उससे 100 गुना 9 कोटि घोड़े दिए उच्च जाति के, और उससे 100 गुना पुरुष दास जो होते ना, अभी ये तो सखी आ गई ना, तो सखा के रूप में दास भेज दिए, कितने 9 अब्ज 900 कोटि दास, इतना सारा भगवान ने उनको दहेज दिया। और बड़ी धूमधाम से कोसल देश में उनका विवाह समारंभ किया, बड़ी धूमधाम से सभी साधुओं को ऋषियों को बुलाया, सारे कोसल देश को आमंत्रित किया और बड़े ही ऐश्वर्य के साथ में नग्नजीत राजा ने मित्रविंद सत्या के साथ में भगवान का विवाह किया और उसके बाद में उन्होंने उनका विदाई किया है बहुत सुंदर तरीके से। और अपना इतना सारा दहेज की सेना स्वयं और रानी को साथ में लेते हुए व्रत में धारण करते हुए जरे आगे चले द्वारका की ओर। और जैसे ही खबर मिली लोगों को कि कृष्ण का विवाह सत्या के साथ हुआ, 7 बैलों का प्रण कृष्ण ने जीता, तो सारे राजकुमार जो हार गए थे, हाथ पांव टूटे हुए चले गए थे, दुखी हुए थे, वैफल्यग्रस्त हुए थे, विफलता को प्राप्त किए थे, उनके घर में द्वेष उत्पन्न हुआ मन में उनके, जो सत्या देवी मुझे प्राप्त नहीं हुई वो इस कृष्ण को प्राप्त हो रही है। तो सारे लोग इकट्ठा हो गए, सैन्य को लेकर उन्होंने भगवान पर एक साथ आक्रमण किया, तीरों की बौछार किया भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान के हाथ में अर्जुन थे उस समय। अर्जुन ने भगवान को कहा आप आराम से चलिए, मैं इन सबको निपट लूंगा। अब बड़ी सहजता से अर्जुन ने सभी वीरों को जो आक्रमण कर रहे थे सबको खदेड़ दिया, उन्होंने एक भी वीर का वध नहीं किया, लेकिन सब अर्जुन के इस शौर्य से प्रभावित होकर भाग गए। अर्जुन ने भी भगवान के विवाह के प्रसंग में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, हाँ किसी का वध नहीं होना चाहिए अशुभ ऐसे। एनीवेज क्षत्रियों के विवाह में तो युद्ध होता ही है, हाथ पांव और सर टूटते ही है, लेकिन इस विवाह में भगवान ने तो अपना विवाह में पहले कई बार रुक्मिणी के विवाह में भी उन्होंने बहुत लोगों का खून बहाया, लेकिन इस बार भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन युद्ध कर रहे थे, इसलिए अर्जुन ने किसी भी योद्धा का वध नहीं किया। और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से शांति से भगवान की बारात जो है वो दुल्हन को लेकर द्वारका पहुंच गई और सब द्वारकावासियों ने बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया। इसके बाद में कुंती देवी की और एक बहन थी, उसका नाम था श्रुतकीर्ति, और श्रुतकीर्ति की बेटी थी भद्रा, और भद्रा के जो भाई थे वो श्री कृष्ण पर बड़ा प्रेम करते थे, उन्होंने स्वयं जाकर अपने बहन को श्री कृष्ण भगवान को पत्नी के रूप में भेंट दे दिया विद ग्रेट लव एंड डिवोशन एंड अफेक्शन। उन्होंने जाकर अलंकार पहने हुए सज धज के अपनी बहन को वधू बनाकर भगवान को भेंट में दे दिया। वो कैकेयी देश की थी, हाँ, जहाँ से कैकेयी थी। और भद्रा के बारे में ऐसा कहा गया है कि भद्रा पीला वस्त्र पहना करती थी और हमेशा कृष्ण भगवान की विग्रह को अनेक वस्तुओं से पूजन किया करती थी। और जब वो कृष्ण भगवान को पूजती थी तो उनके केवल विचार से बेहोश हो जाती थी। उसका बचपन में वो कई हजारों बार बेहोश हो चुकी थी श्री कृष्ण भगवान की याद से, भाव विभोर होकर, हाँ, अष्टविकार के प्रभाव से वो बेहोश होकर गिर जाती थी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान पर जो उनका प्रेम था वो व्यक्त करने में वो उसको शर्म आती थी। शी वॉज फीलिंग शाय। और उन्होंने अपना प्रेम काफी साल तक छुपा कर रखा था, लेकिन फिर भी भाई लोग जान गए उसको और उन्होंने अपनी बहन की इच्छा पूरी करके बड़े प्रेम से अपना शादी कर दिया उनके साथ में। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ, अभी सातवीं जो, नहीं, 7 हो गए। रुक्मिणी, जाम्बुवती, सत्यभामा, यमुना, मित्रविंदा, सत्या और भद्रा, 7 हो गए। अभी आठवीं जो भगवान की पत्नी होने वाली है वो मद्र देश की थी। आज का क्या है मद्र देश? मतलब मद्रास, उसका नाम मद्रास उसी पर आ गया है। मद्र देश, मद्र देश, मद्र देश, तो मद्रास हो गया उसका। तो मद्र देश में सिंधु नद नाम का राज्य था और बृहत्सेन राजा थे उस समय। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा लिखा गया है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि लक्ष्मणा के स्वयंवर में भगवान ने जाकर वही राक्षसी रूप विवाह के रूप में उसको उठाकर ले गए। वो जैसे गरुड़ अमृत के पात्र को राक्षसों के हाथ से चुराकर समुद्र मंथन के समय ले गए थे, उसी प्रकार से भगवान ने सबके बीच में जाकर स्वयंवर में लक्ष्मणा को उठाकर ले गए। लेकिन गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी इसका वर्णन अलग तरह से करते हैं। तो वो वर्णन इस प्रकार से है वर्णन। सिंधु नद नाम का बहुत ही सुंदर पवित्र राज्य था पश्चिम दिशा में, मद्र देश में। और बृहत्सेन राजा को लक्ष्मणा नाम की सुंदर कन्या थी। विशेष बात यह है कि ये सभी लक्ष्मी जी के अवतार थे और भगवान कृष्ण के ये चिरंतन सखियां थे जो अवतार लेकर कृष्ण लीला में आए थे। तो ये लक्ष्मणा का विशेषता ये थी कि हृदय में बचपन से भगवान के लिए प्रेम था। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि भगवान के बाल्यपन से उनकी लीलाओं का वर्णन आने जाने वाले साधु लोग किया करते थे। पुराने जमाने में राज्य के अंदर ऐसा रिवाज था कि हमेशा साधु लोग राज्य के पास आते थे, राजा उनका आदर सत्कार करते थे और फिर उनका सत्कार होने के बाद में बैठकर वो भगवान का गौरव सुनाते थे। उस समय भगवान मथुरा में, द्वारका में, मथुरा में और ब्रज में लीला कर रहे थे, तो भगवान की सारी लीलाओं का श्रवण ये कन्याएं करती थी। तो लक्ष्मणा को भगवान से प्रेम हुआ लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाई। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि जब हम दिन में कुछ छुपाते हैं तो रात में नींद में बोलते हैं। अक्सर कभी किसी का प्रेम होता है लड़का लड़की का, तो ये बातें माता पिताओं को समझ में आती है, क्योंकि वो जब रात को जगते हैं और बेटी बेटियों का जोर जोर से बोलना सुनते हैं तो उसमें समझ आते हैं कुछ गड़बड़ है और फिर प्रश्न पूछते हैं, फिर ढूंढ के निकालते हैं। तो लक्ष्मणा नींद में क्या बोलती थी? हे सूर्यदेव, मतलब नींद में वो सूर्यदेव की प्रार्थना कर रही है, हे सूर्यदेव आप बड़े दयालु हैं, मैं आपको पूजन कर रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी शरण स्वीकार कर ली है और जैसे आपकी कन्या कालिंदी का विवाह आपने श्री कृष्ण भगवान से करवाया है, उसके लिए श्री कृष्ण भगवान से विवाह करने के लिए आपने सहायता किया है, उसी प्रकार मेरा विवाह भी श्री कृष्ण से करवा दीजिए। फिर वो अगले स्वप्न में कहती है कि जब मैं रात को और दिन में आकाश में कोई घना बादल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि घने बादल से कोई सांवले रंग का एक पुरुष मुझको देखकर स्मित हास्य कर रहे हैं। पता नहीं कौन है वो, जब भी मैं बादल में देखती हूँ तो बादल में वो मुझे दर्शन देता है और वहाँ से बड़े प्रेम से मेरी ओर मुस्कराता है। तो लक्ष्मण की माँ ने जाकर पति को बताया, अपने पति को, कि पता नहीं हमारी बेटी स्वप्न में क्या क्या बोलती रहती। तो फिर पिताजी को बड़ा आनंद हुआ कि मेरी बेटी का प्रेम श्री कृष्ण भगवान से हो रहा है। तो वो सोचते कि ऐसा स्वयंवर रचाऊंगा कि विश्व में कोई उसको पार नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने जैसे द्रौपदी का स्वयंवर बनाया था, वैसे ही मछली का यंत्र बनाया। द्रौपदी वाले यंत्र में इसमें यह अंतर था कि द्रौपदी वाला यंत्र चारों तरफ से खुला था, जब वो मछली जो यंत्र में बिठाई गई थी वो गोल 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 घूमती थी, तो ये यंत्र में वो चारों तरफ से तो ढक दिया गया था, और उसका प्रतिबिंब था वो नीचे के जलाशय में केवल दिखाई पड़ता था। ऐसा नहीं कि आप यंत्र को भी देख रहे हैं, घूमने वाले मछली को भी देख रहे हैं, और जल में भी उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, फिर अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं। वो द्रौपदी के स्वयंवर में था। अर्जुन ने मछली को भी देखा, परछाइयों को भी देखा, फिर मछली को देखा, फिर अपना तीर बाण लगाया। और मारना ऐसे है कि आखिर में आपको जल में ही देखना है, और जल में देखकर घूमते हुए मछली को तीर मारना है, और मछली का भेद करना है। ऐसे नहीं कि केवल मछली के आसपास में चले जाना है। तो ऐसे बहुत कठिन प्रण में फिरते हुए लक्ष्य, मत्स्य का लक्ष्य भेद, इस प्रण में जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, ये सभी वीर आए थे। और धनुष लिखा गया था, कहते कि सात ताड़ के समान ऊंचा था वो धनुष, उसको उठाना है पहले, उसके बाद उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना है, प्रत्यंचा को खींचकर उसको बांधना है, फिर प्रत्यंचा को बाण लगाकर खींचना है, उसके बाद पानी में देखकर निशाना बनाना है, और फिर उस मछली का भेद करना है। कितने स्टेप्स है उसके अंदर। तो आचार्य बताते हैं कि इसमें से तो कई लोग तो पास में आए नहीं उसको देखकर, क्योंकि लक्ष्य तो दूर रहा, लेकिन वो धनुष इतना भयंकर था, उसको उठाने का किसी ने हिम्मत ही नहीं किया, तो वो आए नहीं उधर। कुछ लोग आए हिम्मत करके, लेकिन जब उन्होंने धनुष को उठाने का प्रयास किया, धनुष ऐसे तरह से उनके ऊपर गिरा कि वो जख्मी होकर चले गए। कुछ लोगों ने धनुष को उठाया, और जब वो बड़े प्रयास से उस डोरी को लगाकर उसको बांधने का प्रयास कर रहे थे, तो जानते हैं ना आप, जब रबर आप खींचते हो तो कभी कभी छूट जाते हैं अपने हाथ से, तो वो स्प्रिंग एक्शन की वजह से वो धनुष ने उनको इतना जोर से प्रहार किया कि कई फीट दूर वो फेंके गए। धनुष ने ही झटका देकर उनको फेंक दिया, इतना भयंकर धनुष था वो। उसके बाद जरासंध आए, शिशुपाल आए, भीमसेन आए, दुर्योधन आए, और कर्ण भी आए। ऐसे कहते कि उनके अंदर क्या कहते हैं, कुशलता थी धनुष बाण चलाने की, लेकिन वो उनके पास कुशलता की वजह से वो धनुष को उठाने में इतने समर्थ नहीं थे। और अर्जुन के पास में, सॉरी मैं उल्टा बताया, जरासंध, भीम, शिशुपाल, कर्ण, इनके अंदर शक्ति थी उसको उठाने की, लेकिन जो कौशल्य चाहिए था बाण लगाकर उसको लक्ष्य को भेदने का, उनके बाण कहीं कहीं चले गए। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तो उठा लिया, उन्होंने खींच भी लिया, लेकिन उनके अंदर कुशलता नहीं थी, वो एकाग्रता, और वो घूमते हुए मछली को जल में देखना जो बाजू में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उनके बाण कहीं ना कहीं चले गए। फिर लास्ट में अर्जुन आए, अर्जुन ने धनुष को उठाया, लेकिन उसके लिए वो बड़ा भारी था, उतनी शक्ति अर्जुन के अंदर नहीं थी जितनी जरासंध, भीमसेन और शिशुपाल के अंदर थी, लेकिन कौशल जरूर था। अपने कुशलता से अर्जुन ने उस ढके हुए घूमते मछली को जल में देख लिया, और जब बाण चलाया तो वो मछली को छूकर चला गया, मछली का भेद नहीं कर सका वो। तो एक तरह से अर्जुन प्रण जीत गए, लेकिन फिर भी जीत नहीं गए। तो सबके होने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान उठे, और श्री कृष्ण भगवान ने बड़े ही सहजता से, जैसे कोई बालक फूल को उठाता है, वैसे धनुष को उठाया, और बड़ी लीलाया ना, बड़ी लीला, लीला मतलब क्या, एकदम इजीली, हैप्पीली उन्होंने उस मछली पर निशाना लगाया, और ऐसा तीर चलाया कि मछली के ऊपर तीन प्रकार के आवरण थे, जिसको भेद कर फिर मछली को भेद करना था और मछली को गिराना था। तो ये तीनों आवरणों को जल में देखते हुए भगवान ने तीर चलाया, और तीनों आवरणों को भेद किया, और फिर मछली का भेद किया, तो इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि वो ब्रह्मांड को पार करके और लोकों में चली गई। और कहा गया कि जो सब लोग शत्रु लोग वहां पर बैठे थे भगवान का द्वेष करने वाले, उस सबके हृदय में उन्होंने डर पैदा किया उस आवाज से। तो जय गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने तीन आवरणों को छेद करके मछली का भेद इसलिए किया कि उनको मछली का भेद नहीं करना था, एक्चुअली सबके हृदय का भेद करना था जो उनसे द्वेष करते थे। फिर उसके बाद में जैसे ही इस मछली का भेद हुआ तो श्री कृष्ण भगवान को देने के लिए लक्ष्मण के पिताजी जो बृहत्सेन राजा थे, बृहत्सेन राजा थे, अपनी कन्या को लेकर आए। उस समय आकाश में जय जयकार हुई, देवता लोग ने जय जयकार किया, लगातार पुष्प वृष्टि हो गई स्वर्ग, उस स्वर्ग से। और अभिजिन मुहूर्त यानी कि दोपहर को 12 बजे के समय पर भगवान ने ये लक्ष्य भेद किया, बहुत पवित्र मुहूर्त मानते हैं उसको। उस मुहूर्त में आकाश से सभी देवता लोग अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाने लगे, गंधर्व नृत्य करने लगे, गायन करने लगे, और किन्नर लोग नृत्य करने लगे, सभी संत लोग, ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग वेदों का श्लोकों का उच्चारण करने लगे। और उस समय जब आकाश से निरंतर पुष्पों की वर्षा हो रही थी देवताओं के द्वारा, उस समय लक्ष्मणा अपने हाथ में सोने और रत्नों के द्वारा हुआ बने हुए माला लेकर आई, बाकी सब जगह फूलों की माला लेकर आए थे। लक्ष्मणा जो है वो सोने के अलंकार में जो रत्न जड़े हुए हैं ऐसी माला लेकर आई और उन्होंने भगवान को उसको पहनाया। गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि जब लक्ष्मणा आ रही थी तो उनके चरण कमल, उनके हाथ, उनकी आंखें और उनका चेहरा गुलाबी आभा प्रकाशित कर रहा था। ये चार वस्तुएं उनके शरीर की जो उसमें गुलाबी आभा प्रकाशित हो रही थी। श्री कृष्ण भगवान ने उसको अपने रथ पे बिठाया और बाणों की क्या कहते हैं उसको, बाणों के सुरक्षा कवच में उसको ढक दिया उन्होंने भगवान ने। और उस समय एक अद्भुत घटना हुई, जैसे भगवान ने उसको रथ पे बिठाया और बाणों की शैया में कवच में रख दिया तो भगवान के चार भुजा प्रकट हो गए। दो भुजा अपने नवपरिणीत वधु को आलिंगन दे रहे थे और दो भुजा में शस्त्र लेकर भगवान चल पड़े। उस समय बृहत्सेन राजा ने बड़ी सुंदर सेना के साथ में भगवान का विदाई किया और हुआ ये कि उस समय भी युद्ध हुआ, बहुत लोग जो द्वेषी थे उन्होंने भगवान पर आक्रमण किया और भगवान ने सब उसका परास्त कर दिया। और बृहत्सेन राजा जो है बड़ी बड़े बड़े दहेज के साथ में, बड़ी सेना के साथ में द्वारका पहुंचे और उन्हें अपने खर्चे से द्वारका में भगवान का विवाह कराया, संपन्न कराया। अब इस बात पर एक विशेष बात जीव गोस्वामी समझाते हैं, वो ये है कि ये जो भगवान की पत्नियां थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, ये सब ब्रज की गोपियों का अवतार थी। जैसे चंद्रावली जो थी वो रुक्मिणी बनी, राधा रानी सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई, विशाखा देवी कालिंदी के रूप में प्रकट हुई, जमुना देवी, ललिता देवी जाम्बवती के रूप में प्रकट हुई, और श्यामा देवी लक्ष्मणा जो हमारा वर्णन अभी सुन रहे हैं हम लोग वो बनी, शैब्या देवी मित्रविंदा बनी, और भद्रावली भद्रा देवी बनी, और पद्मा देवी सत्या देवी बनी। इसका कारण ये है कि जो सखियाँ थी भगवान की वो भगवान के विरह में बड़ी व्याकुल रहा करती थी ब्रज में, और इस रूप में जब भगवान का उन्होंने संग किया तो मानो थोड़ा उनका विरह का अग्नि कम हुआ, अपने आप के मति को सही जगह पर रखने के लिए वो सफल रही, नहीं तो उनकी मति जो है वो बिल्कुल भगवान के विरह में एकदम पागल की तरह हो रही थी। तो आचार्य बताते हैं कि इन गोपियों का जब विस्तार हुआ भगवान के रानियों के रूप में तो उनका विरह शांत हो गया। इस प्रकार से गोपियाँ और भगवान की रानियाँ एक ही व्यक्ति थी। इसके बाद में अभी 3,08,00,000 रानियों का विवाह का वर्णन समाप्त हुआ। इसके बाद में अभी 16,100 रानियों का विवाह का प्रसंग आता है भागवत में। वो ये है कि आप जानते हैं कि भगवान ने जब वराह अवतार लिया था तो उसके कारण उसका ये था कि हिरण्याक्ष ने लत्ता प्रहार करके पृथ्वी को अपनी कक्षा से हटाकर गर्भोदक सागर में ढकेल दिया था और पृथ्वी जो है कक्षा से पदच्युत होकर गर्भोदक सागर के तले में जाकर पड़ी थी। तो उस समय ब्रह्मा जी के नाक से वराह देव ने अवतार लिया और कुछ ही क्षण में वो बहुत विशाल शरीर धारण किया उन्होंने और जाकर सीधे छलांग लगाई गर्भसागर में, और गर्भसागर में जाकर उन्होंने अपने सिंगों पर पृथ्वी को उठाया और सागर के तले से ऐसा उठाकर उन्होंने अपनी कक्षा में रख दिया। तो उस समय भगवान वराह और पृथ्वी देवी भूमि देवी के संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ। वो भूमि का पुत्र, उसका नाम था भौम, भूमि का पुत्र भौम। लेकिन दुर्भाग्यवश भौम ने जाकर आगे बाणासुर के साथ में कुसंगत किया। बाणासुर भगवान का दुश्मन है, राक्षस है, दानव है, तो उसके साथ में संघ की वजह से ये भगवान का पुत्र भौम भौमासुर बन गया। उसका और एक नाम है नरकासुर, और वो इतना शक्तिशाली था कि उसने सारे देवताओं को परास्त करके बहुत त्रस्त कर दिया था। सारे देवता परेशान हो गए थे उससे, और वो तकनीकी दृष्टि से भी बहुत प्रगत था, शक्तिशाली भी था, बहुत सारे वरदान उसको प्राप्त थे, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी उसने। उसका दुरुपयोग करते हुए उसने सारे देवताओं को परास्त कर दिया। तो एक दिन द्वारका में भगवान अपने सभा में बैठकर थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे, बड़े लाइट मूड में सब लोग थे, तो अचानक लगा कि द्वारका के सभा के अंदर एक सफ़ेद बादल आया और बहुत घनघोर वर्षा करते हुए आया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ, कौन सा घना बादल है, बादल तो आकाश से आता है, ये तो द्वारका के सुधर्मा सभा के गेट से अंदर आया। उसके बाद में उनको समझ में आया कि ये सफ़ेद बादल जो था वो ऐरावत हाथी था, 5 सुंड वाला, और वो द्वारका में भगवान का दर्शन करने से उसको अति आनंद हुआ। उसमें जो आंसू उसके बहे वो वर्षा के रूप में द्वारका के सुधर्मा में वर्षा के रूप में वर्षा कर रहे थे। फिर सब लोगों ने बताया कि ये बादल नहीं है, ये ऐरावत है और उसके ऊपर इंद्र बैठे हुए हैं जो आपको मिलने आ रहे हैं। सब लोगों ने कंक्लूड किया उसको। फिर इंद्र द्वारका में आए ऐरावत में बैठकर, और फिर इंद्र ने कृष्ण भगवान के ऊपर, कृष्ण भगवान के लिए शिकायत की कि हम सब देवता लोग कैसे इस भौमासुर से त्रस्त हैं, आप उनसे बचाइए और आप हम सबको देवताओं का क्लेश को नष्ट कर दीजिए। और जरूर इंद्रदेव ने विनती किया कि आप गरुड़ देव को इसमें लेके जाइए, गरुड़ देव के पीछे बैठकर, उसके पीठ पर बैठकर इसका सामना करने के लिए जाइए। तो श्री कृष्ण भगवान तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लेते हैं, गरुड़ को आमंत्रित करते हैं और सत्यभामा को भी ले जाने का निर्णय लेते हैं। उसके दो कारण हैं, क्योंकि सत्यभामा को ये युद्ध देखने की बड़ी इच्छा थी कि भौमासुर के साथ भगवान कैसा युद्ध करते हैं, और साथ साथ में सत्यभामा ने एक बार कृष्ण भगवान से पारिजात की इच्छा की थी, क्योंकि नारद मुनि ने रुक्मिणी देवी को एक पारिजात का पेड़ ला कर दिया था, और पारिजात जो था वो स्वर्गीय पारिजात था, उसकी खुशबू, उसका दर्शन, उसका ऐश्वर्य, उस फूल का इतना सुंदर था कि सत्यभामा को लगा कि मेरे भी आंगन में एक पारिजात का पेड़ होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी मैं, भगवान जानते थे कि मैं भौमासुर का वध करूंगा। उसके पीछे और एक कारण था कि देवता लोग इतने परेशान क्यों थे, क्योंकि इंद्रदेव की माता के जो सुंदर कुंडल थे वो पूरे ब्रह्मांड में मशहूर थे, रत्नों से हीरों से भरे हुए, वो कुंडल इसने चुराए थे। वरुण देव के सिंहासन पर जो छत्र होता है, छतरी, वो इसने चुराई थी, और बहुत सारे देवताओं का बहुत सारा सामान चुराया था उसने, कीमती कीमती सामान। तो अदिति के कुंडल, इंद्र की माता के कुंडल जब भौमासुर का वध करेंगे तो मिल जाएंगे वापस, फिर हम उसको लेकर इंद्रदेव के अमरावती में जाएंगे, अदिति को वापस करेंगे, और उस इंद्रलोक में नंदन वन के अंदर जो बगीचा है वहां से फिर हमारी पत्नी को ये पारिजात का पेड़ भी दे देंगे। इस भावना से उन्होंने सत्यभामा को भी लिया। सत्यभामा को लेकर जब गरुड़ पर सवार हो गए तो भगवान के शरीर से 2 और भुजाएं प्रकट हो गई। वो भुजाएं देखकर सत्यभामा को हंसी आई और अपना पल्लू लेकर मुंह ढकते हुए वो हंसने लगी भगवान के इस दिव्य रूप को देखते हुए, क्योंकि भगवान से विवाह होता 2 भुजा वाले थे वो, और अचानक गरुड़ में बैठते ही नारायण भाव में आ गए और 4 भुजाएं प्रकट हो गई। तो बड़े प्रेम से हंसती है भगवान को देखकर। अब ऐसा वर्णन आया है कि भौमासुर का जो राज्य था उसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर, और प्राग ज्योतिषपुर के बाउंड्री में 5 बाउंड्रियां थी, पंच महाभूतों को बड़ी तकनीकी दृष्टि से यूज करके हुए, कभी बिजली के तार के रूप में, कभी मनुष्यों के रूप में, कभी वायु के रूप में, हाँ जो विषारी वायु होते हैं, कभी जलाशय के रूप में, ऐसे पांचों महाभूतों का उपयोग करके बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड उसने अपने राज्य को ऐसे सरहद बना दी थी कि कोई भी व्यक्ति उनके परमिशन के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। हजारों सैनिक पहले रखे थे, उसके बाद में विषारी वायु रखे थे, उसके बाद में जलाशय रखे थे, उसके बाद में ऐसे किया था कि जैसे हम होता ना वो तार लगाते ना कुंपण फेंस, उसके अंदर करंट भी लगाया था उसने। उसके ऊपर उसका मित्र था मूर राक्षस, उसने वो बहुत बड़ा टेक्निकल साइंटिस्ट था वो, जैसे आजकल के होते ना आतंकवादी बड़े बुद्धिमान ही होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं वो। उसी प्रकार से ये मूर राक्षस था, उसने बड़ी तकनीकी रूप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वहां पर एक फेंस बनाया था, पांच में से एक। तो ऐसा लिखा है आचार्यों ने कि भगवान अपने शक्ति से पंच महाभूत को एक जीव कर देते, मतलब सारे पंच महाभूत को इथर यानी कि अंतरिक्ष में समाविष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं पूरा। पहले पृथ्वी तत्व को जल तत्व में, जल तत्व को अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व को वायु तत्व में, वायु तत्व को अंतरिक्ष में विलीन कर देते हैं। उसके बाद में अपनी गदा से सब सैनिकों को मार देते हैं जो वहां पर एक कवच धारण किए हुए हैं, सुरक्षा कवच। उसके बाद में धनुष बाण से वो जो मूर राक्षस ने किया वो जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसको तोड़ देते हैं। इस प्रकार से सारे पांच प्रकार के बंधनों को तोड़कर भगवान प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान अपना शंख बजाते हैं तो शंख के आवाज से प्राग ज्योतिषपुर में जितने लोग हैं सब लोग का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उस समय प्राग ज्योतिषपुर के पास जो समुद्र है उसके अंदर कई साल तक मूर राक्षस जो है निद्रिस्त है, वो जल को भेद कर भी आवाज उसको जगा देती है और वो क्रोध से तिलमिला उठता है। उसके पांच सर होते हैं, जब वो क्रोध से बाहर निकलता है तो लगता ऐसे है कि पांच सर लेकर जब बाहर निकलता है तो मानो प्रयाग प्रलय काल में जो सूर्य देव आते हैं बाहर, उसका तेज कितना भयंकर होता है वैसे वो दिखाई पड़ता है। और अपने पांचों मुख से इतनी भयंकर गर्जना करता है वो, उसे कहा गया कि उसकी गर्जना जो है वो 14 लोगों को छेद कर ब्रह्मांड को पार करके बाहर निकलती है। और सब लोगों को लगता है कि अभी क्या प्रलय काल आ गया क्या, ऐसा भयंकर अनुभव सब लोगों को होता है। ऐसे कहा गया है कि जब मूर राक्षस ने इतनी भयंकर गर्जना की तो ब्रज में भी नंद महाराज यशोदा देवी ने वो गर्जना सुनी, उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से जब मूर राक्षस ने भगवान पर आक्रमण किया, सबसे पहले गरुड़ को देखकर गरुड़ की ओर त्रिशूल फेंका तो भगवान ने अपनी बाणों से उस त्रिशूल को काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। उसके बाद में उसने धनुष से बाण से भगवान पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने दो बाणों से और अनंत बाणों से, एक तो त्रिशूल को काट दिया और उसके बाद में अनंत बाण मानकर उनके मुंह को बंद कर दिया जिससे वो गर्जना कर रहा था। तो लग रहा था कि बाण भने हुए तोड़ी रहे वो, हाँ बाण होते ना पीछे, ऐसे बाण मार दिए उसके पांच मुंह के अंदर, लगता था कि वो पांच तोड़ी बन गए बाणों से, और उसकी ध्वनि को बंद कर दिया। फिर वो सब शस्त्रों को आह्वान करके भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगा, भगवान ने सब शस्त्र तोड़ दिए उसके। फिर वो बाजुओं को लेकर, अपने बाहुओं को लेकर भगवान पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन भगवान पर अपने बाजुओं से मुष्टि से आक्रमण करने के पहले ही भगवान उस पर चक्र चला देते हैं और उसको उसके पांचों सरों को काट देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही अपने पिता की मृत्यु होती है तो उसके सात पुत्र जो है एक अपने पीठ नाम के राक्षस को लेकर भगवान पर एकत्र आक्रमण करते हैं। सात पुत्र और एक राक्षस पीठ जो उनका सेनापति बनकर आता है और सैन्य के साथ सब मिलकर भगवान पर बाणों का वर्षाव करते हैं और भगवान अपने गदा से सबको नष्ट कर देते हैं, सबके सर काट देते हैं और पीठ का भी वध कर देते हैं और सातों पुत्र भी मर जाते हैं। उसके बाद में भौमासुर नरकासुर, उसको पता चलता है कि ये भगवान आकर मेरा तो पांच जो कवच थे उसको काट दिए और मूर राक्षस को मार दिया, उसके सात पुत्रों को मार दिया, पीठ को बड़ा क्रोध आता है उसको, पीठ सेनापतियों को भी मार दिया। फिर वो समुद्र किनारे जिनको बड़ा किया गया है छोटे से, समुद्र किनारे में नशे वाले दवा दी, मतलब द्रव्य मदिरा पे पान करके इनको मदिराग्रस्त कर दिया है, इंटॉक्सिकेटेड कर दिया है। ऐसे हाथियों की लक्षावधि सेना को लेकर वो आक्रमण करते हुए भगवान पर, भगवान के सामने आता है। सबसे पहले वो भी शताग्नि अस्त्र जो है अग्नि के रूप में बनता है, वो भगवान पर छोड़ते हैं, और वो अस्त्र छोड़ने के बाद भगवान जो है वो चक्र से उसको काट देते हैं। फिर भौम गरुड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि भौमासुर ने जो गरुड़ पर आक्रमण किया, जितने भी शस्त्र फेंके, वो भौमासुर के आक्रमण गरुड़ को पुष्पमाला पहनाने का जैसा अनुभव हुआ उनको, जैसे कोई फूल फेंक रहा है उनके ऊपर। आखिर में युद्ध भूमि में भौमासुर के सारे अस्त्रों को भगवान ने भेद कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसे कि मानो धान्य के दाने होते ना, सारे शस्त्रों को टुकड़े कर दिया, सारे हाथियों को मार दिया। बहुत सारे हाथी तो भाग गए उल्टे, और बहुत सारे खड़े रहे, उनकी मृत्यु हो गई, और पूरे भूमि पर अकेला भौमासुर बच गया। वो देख रहा है कि मैं तो असहाय होते जा रहा हूँ, मेरे सारे वीर पुरुषों का वध हो गया है। तो आखिरी प्रयास के रूप में वो त्रिशूल को अभिमंत्रित करके भगवान पर भेजता है, भगवान उसको भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद में सामने जाकर भगवान उस पर चक्र का आक्रमण करते हैं और चक्र से उसका सर काट देते हैं, और इस तरह से भौमासुर का वध होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो भौमासुर के वध के बाद देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, और भौमासुर के जो रिश्तेदार हैं वो जोर से आक्रोश करते हैं दुख से कि अपना नेता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद में वसुंधरा देवी यानी भूमि देवी वहां प्रकट होती है, क्योंकि वो उसकी माता है ना भौमासुर की, वो जानती है मेरा पुत्र जो है वो भक्त बनने के बदले भगवान का दुश्मन बन गया, दानव बन गया, दुराचारी बन गया, देवताओं का शत्रु बन गया। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था भगदत्त, और ये भगदत्त जो था अपना पिता भौमासुर के व्यवहार से बचपन से ही दुखी था और डर से भी परेशान था, क्योंकि वो तो बालक था और पिताजी बड़े योद्धा थे, पिताजी के आतंकवादी कृत्यों से वो बचपन से भयभीत था। तो वो दादी के पास रहा करता था भूमि देवी के पास। तो जैसे ही भगवान के हाथ से भौमासुर का वध होता है तो पृथ्वी देवी भगदत्त को देकर भगवान के सामने आती है और भगवान को वैजयंती माला अर्पण करती है, जो भगवान पहनते ना विष्णु भगवान, और भगदत्त को भगवान के सामने प्रकट करती है और भगवान की स्तुति करती है, और लास्ट में कहती है कि ये भगदत्त जो है ये इनका पुत्र है और ये बड़ा अच्छा लड़का है, बड़े अच्छे भाव का लड़का है, पिता के ये जो दुराचारी कृत्य थे इससे परेशान था और भयभीत था, मैं चाहती हूँ कि पिताजी का जो कर्म प्रभाव है इस पर न पड़े, और मैं चाहती हूँ कि आप, आपके चरणों में शरणागत है, आप इसको स्वीकार करें, इसको आशीर्वाद दें, इसको भय से मुक्त करें और अपना भक्त के रूप में अपने आश्रय को उसको प्राप्त कराएं। तो भगवान भूमि देवी के प्रार्थना से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उस पुत्र को भगदत्त को अपने आश्रय में लेते हैं। आगे जाकर आप महाभारत पढ़ेंगे तो ये भगदत्त जो है वो पांडवों के पक्ष में कौरवों के साथ में युद्ध करता है, कई जगह पर उसका बड़ा वो योद्धा बन गया। वो भूमि देवी को अदिति के कुंडल वरुण का छत्र भी भगवान को लौटाती है और एक सुंदर रत्न जो है भगवान को भेंट में देती है। उसी समय भगवान भौमासुर के महल में प्रवेश करते हैं, और जब भगवान प्रवेश करके देखते हैं तो इंद्र से भी अधिक संपन्न और ऐश्वर्य उसके महल में देखते हूँ। कितनी सारी वस्तुएं, उसका फर्नीचर, उसके वस्तुएं जो उसके महल में थी वो इंद्र को भी शर्मिंदा करेंगे, ऐसे ऐश्वर्य संपन्न थी। लेकिन जब भगवान इसको निहारते रहते हैं तो उनको बड़ा एक आश्चर्यमय चीज़ दिखाई देती है। उनको अचानक अनेक चंद्र दिखाई पड़ते हैं जो अपने प्रकाश से उनको मोहित कर देते हैं। फिर पता चलता है कि वो चंद्र नहीं थे, वो 16,100 कन्याओं का मुख कमल था, जो भगवान को देखकर चंद्र की तरह शीतल प्रकाश सब ओर प्रकाशित कर रहा था। वो 16,100 कन्याएं कौन थी? देवता, उपदेवता और क्षत्रिय राजाओं की कन्याएं थी वो, और उन देवता, उपदेवताओं और राजाओं को परास्त करके उनकी सारी कन्याओं को ये लेकर आया था। इसको कुछ एक महान भयंकर यज्ञ करना था, उनमें सारी कन्याओं को उसको बलि देना था और कुछ दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना था। साथ साथ में इन कन्याओं के सौंदर्य से भी वो प्रभावित था, तो दुविधा में था कि यज्ञ करूं कि इनके साथ विवाह करूं। लेकिन उसको समय था, उन सबको उसने अपने महल में रखा था, एक तरह से कैद में रखा था, ऐसा नहीं कि अपने जेल में रखा था उनको, लेकिन अपने महल में नजर कैद रखा था। और ये सारी 16,100 कन्याएं नित्य भगवान का चिंतन किया करती थी, इस आशा में कि भगवान हमें आकर बचाएंगे और हमारे साथ विवाह भी करेंगे। तो जब भगवान को देखते हैं, खुद से चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि कौन है, तो उनको और भगवान को दोनों को एक साथ ये हृदय में अनुभूति होती है, साक्षात्कार होता है कि हम तो चिरंतन पति पत्नी हैं। इनको लगता है कि यही सब हमारी पत्नियां हैं, और उनको लगता है कि ये तो हमारे पत्नी पति हैं। बहुत दिन के बाद में उनका दर्शन हुआ है, उसके बाद में भगवान के साथ में उनका वार्तालाप होता है। भगवान कहते हैं कि मैं आपको रिहा कर रहा हूं, अभी आप मुक्त हैं, भौमासुर के इस दरबार से आप मुक्त हैं। तो बड़ा धन्यवाद करती है वो, भगवान के चरण में शरण जाती है और कहती है, भगवान आपने हमको तो मुक्त कर दिया, लेकिन क्षत्रिय धर्म में इस उसमें द्वापर युग में तो रिवाज था कि अगर कोई जो विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित कन्या अगर होती है, तो एक रात भी अगर पराए घर में रहती है तो भ्रष्ट मानते हैं उसको, उसके बाद कोई विवाह नहीं करता है। तो कहते हैं, आपने तो हमको मुक्त कर दिया, लेकिन पिताजी हमें स्वीकार नहीं करेंगे और कोई भी राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा, तो हमारे लिए केवल एक ही पर्याय बचता है। वी आर लाइक रिजेक्टेड लेडीज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, अभी के समय पर हम एक क्या कहते हैं उसको, जिसको त्याग दिया है, ऐसी कन्याएं हो गई हैं। जब तक हम इसके कैद में थे तो एक जगह पर थे, अभी आपने हमको मुक्त कर दिया है तो हमें कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं है, तो हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है कि हमें आत्महत्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान कितने लस्टी हैं, काम से तप्त हैं, जो काम जोर होता है ना, सेक्स डिजायर, तो लोग जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, जो श्रद्धा रखते नहीं भगवान से, वो कहते हैं कि भगवान तुम्हारे कैसे भगवान है, कितनी पत्नियां, कितनी सहेलियां, रात को किसी पराई स्त्री के साथ नृत्य करते हैं, माखन चुराते हैं, ये कैसे भगवान है ये? ये तो सिंपल जो नीतिमत्ता होती है ना, मॉरलिटी, उसको भी फॉलो नहीं करते। लेकिन यहां पर हम समझ सकते हैं कि भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया किस भाव से किया, जो समाज से अपने स्तर को खो चुकी थी, समाज में उनको स्थान नहीं था, समाज के दृष्टि से एक तो वो त्याज्य कन्याएं थी, कोई पद नहीं था उनके लिए, कोई सम्मान नहीं था उनका, कोई आत्मसम्मान नहीं था उनका, ऐसे कन्याओं को भगवान ने अपनी पत्नी बनाकर आत्मसम्मान दिया, उनको श्रेष्ठ पद प्राप्त कराया। अंतरंग रूप से उनका प्रेम था भगवान के ऊपर, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो एक बहिष्कृत कन्याएं थी, जिसको समाज ने बहिष्कार कर दिया था, या करने वाले थे अगर वो बाहर निकलती थी। ऐसे बहिष्कृत, जिनको कोई सम्मान प्राप्त नहीं था, ऐसी कन्याओं को भगवान ने पत्नी का सम्मान दिया। उसी समय उसी महल में भगवान ने सबको अलंकार दे दिए, सबको ऊंचे ऊंचे वस्त्र दिए, सबको मुकुट धारण कराए, सबके गले में मालाएं पहनाई और 16,100 पालकियां मंगवाई और हर एक देवी को एक पालकी में बिठाया और अनेक सैनिकों को उठाते हुए उस सारी पालकियां 16,100 भगवान ने द्वारका में भेज दिया और द्वारका में उनका स्वागत किया गया। अनेक सैनिकों के साथ में उनको भगवान ने इत्मीनान के साथ द्वारका में भेज दिया। लेकिन भगवान ने सत्यभामा को गरुड़ से नहीं उतारा, सत्यभामा ने सारा युद्ध देखा, सत्यभामा ने इन 16,100 कन्याओं को भी देखा और यह भी देखा कि भगवान उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको सालंकृत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर पालकी में बिठाकर द्वारका भेज रहे हैं, क्योंकि सत्यभामा का काम बाकी था। इनको विदा करके भगवान फिर गरुड़ पर आरूढ़ हो जाते हैं और फिर सत्यभामा और भगवान गरुड़ पर बैठकर अमरावती चले जाते हैं। अमरावती इंद्रदेव के जो इंद्रदेश है उनका, इंद्रलोक है, उसकी राजधानी है अमरावती। तो अमरावती में पहुंचते हैं तो भगवान का बड़े धूमधाम से स्वागत होता है। और भगवान भी इतने भावुक हैं, वो अपनी पत्नी सत्यभामा के हाथ से, अदिति जो इंद्र की माता है, उसको उनसे हाथ से कुंडल पहनाते हैं। ऐसे नहीं कि इंद्र को वापस कर देते, बड़े सम्मान के साथ में अदिति को कुंडल पहनाते हैं और सत्यभामा उनके चरणों में गिर जाती है और अदिति का आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो उसके बाद में इंद्रदेव उनकी पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं, गौरव करते हैं। अभी पारिजात की कथा ऐसी है कि सबसे पहले भगवान ने जब भी सत्यभामा ने मांग की थी मुझे पारिजात चाहिए, तो सबसे पहले भगवान ने अपनी पत्नी के लिए नारद जी से ये पेड़ मांगा था पारिजात का, क्योंकि नारद मुनि हमेशा स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग, पतल लोग में जाते आते रहते ना, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ट्रैवलर, दे कैन बिकम कुरियर। लेकिन नारद मुनि ने मना कर दिया, वो लेके नहीं आए। फिर भगवान ने इंद्र को पूछा स्वयं कि मुझे मेरे पत्नी के लिए तुम्हारे नंदनवन से पारिजात का वृक्ष चाहिए। इंद्र ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, पहले आप मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। तो भगवान ने शत्रुओं का विनाश किया, उन्होंने भौमासुर का वध किया, पहले भी राक्षसों का वध कर दिया था, तो इंद्र को त्रस्त कर रहे थे। उसके बावजूद भी जब दोबारा भगवान ने पूछा तभी भी जाकर उन्होंने मना कर दिया। आप सोच सकते हैं, पहले उन्होंने वर्षा किया ब्रज में, फिर भगवान ने गिरिराज को उठाया, तब इनको पता चला कि ये भगवान है, इनका हमने बेकार में अपराध किया, माफी मांगा, अभिषेक किया, बहुत गिड़गिड़ाए, प्रार्थना किया। वही भगवान जिनके द्वारा इंद्र को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है, इंद्र का पद प्राप्त हुआ है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, इंद्र एक पद है। तो जो इंद्र पद को प्राप्त कर चुके भगवान की दया से, भगवान की दया से राजा बने हुए हैं, भगवान की दया से इतना अधिकार प्राप्त है, इतना भोग प्राप्त है, नंदनवन प्राप्त है, इंद्रलोक अमरावती प्राप्त है, सोमरस प्राप्त है, अप्सरा, उर्वशी, रंभा, मेनका प्राप्त है, वही भगवान अमरावती के मालिक भी है, नंदनवन भी उनका ही दिया हुआ है, सारे पारिजात के पेड़ भी उनके ही है, लेकिन फिर भी भगवान एक एटिकेट के रूप में उनको मांग कर रहे हैं, और ये अपने गर्व के आसक्ति और गर्व के वजह से मना कर रहे हैं भगवान को। तो इंद्र ने दोबारा जाकर मना कर दिया। अब ये कुंडल लौटा रहे हैं, देखो आप, भौमासुर का वध किया, भौमासुर ने उनको परास्त करके, त्रस्त करके इतना परेशान कर दिया था, उनकी माता के कुंडल चुराए थे, वरुण का छत्र चुराया था और कई चीज चुराए थे, तो भगवान इतने प्रेम से भौमासुर को मारकर वो कुंडल वापस लेकर पर्सनली डिलीवर करने के लिए पहुंच गए हैं, और माता को कुंडल पहुंचा भी दिए उन्होंने। उसके बाद दोबारा मांग करते हैं, फिर भी मना कर देते हैं। फिर भगवान वहां से निकलते हैं, अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं, नंदनवन में उतरते हैं, बोलते हैं आपको जो पेड़ अच्छा लगेगा उठा लो। उसके पहले घटना होती है, इसके पहले क्या घटना होती है कि अदिति को कुंडल पहनाने के बाद में भगवान इंद्र को मिलने जाते हैं, तो बाद में सत्यभामा इंद्र की पत्नी को मिलने जाती है, और पत्नी क्या करती है, जैसे कि कोई वधु, कोई विवाहित स्त्री आती है ना, तो उसका विवाहित स्त्रिया सत्कार करती है, उनकी गोद भरती है, उनको नारियल देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको अलंकार देते हैं, कोई सौभाग्यवती के योग्य वस्तु देते हैं। तो ये सब सत्कार करने के बाद में इंद्र की जो पत्नी है वो एक पारिजात का फूल जो है इसके सत्यभामा के बालों में श्रृंगार के रूप में लगा देती है। तो सत्यभामा कहते हैं कि मुझे, थैंक यू वेरी मच, आपने फूल दिया, मुझे इसका पेड़ भी चाहिए। तो इंद्र की पत्नी क्या बोलते हैं सोचो जरा आप। इंद्र की पत्नी बोलती है कि ये जो पेड़ है और ये जो फूल है, ये स्वर्गीय शरीर जिनको प्राप्त है उन्हीं के योग्य है, आप लोग तो मनुष्य हो, पृथ्वी के लोग हो, आप लोग इसके लायक नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये फूल दे रही हूँ, वो ले लो, लेकिन आपको पेड़ नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि आप इसके योग्य नहीं हो। देखिए कितनी 4-5 बार भगवान प्रयास कर चुके, फिर भी उनको मना ही किया जा रहा है, फिर भगवान ज़बरदस्ती उठा लेते हैं, और जैसे ही उठा लेते हैं तो क्या होता है जैसे ही उठा लेते क्या होता है, इंद्र भगवान के जो सेवक है वो भगवान पर आक्रमण करते हैं, कुछ लोग आक्रमण करते हैं, कुछ लोग आकर खबर कर देते हैं, अरे इंद्रदेव आपके नंदन में जाकर जबरदस्ती ये कृष्ण जो है वो पारिजात का वृक्ष उठा रहे हैं। तो इंद्र के उदंडता देखो, अभी अभी कुछ मिनट पहले अदिति की कुंडल लौटा है उन्होंने, अभी अभी उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का भगवान के रूप में पूजन भी किया, स्वागत भी किया, सत्कार भी किया, और अभी अभी वो सेना को लेकर भगवान पर आक्रमण किया। तो भगवान ने छात्र तेज दिखाकर इंद्र को परास्त कर दिया। फिर इंद्र तो को पछतावा हुआ, फिर चरणों में गिरे, फिर वो पेड़ को उठाकर भगवान पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने आंगन में सब सत्यभामा के ये पारिजात का पेड़ लगाया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का भक्त होने पर भी जब हम बहुत धनी बन जाते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी इंद्र जैसी अवस्था हो जाती है। अरे वो इंद्र को वो दुर्वासा मुनि ने महाविष्णु का महागार्लैंड जो ना महाप्रसादी माला वो ला कर दिया था, तभी ये अपने पद के होते ना पद के कोई लाभ होते ना, तो पद का एक लाभ क्या था, अप्सराओं का डांस देखना। तो अप्सराओं का नृत्य देखने में मग्न थे, ये बहुत इतने मग्न थे कि दुर्वास मुनि को भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। दुर्वासा आए तो सत्कार करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, आसन देना चाहिए, वो तो किया ही नहीं। फिर भी दुर्वासा मुनि ने बड़ी दया से उनको महाविष्णु का महाप्रसादी माला दिया, तो वो भी उन्होंने क्या किया, उसको पहना नहीं कुछ नहीं और हाथी के सुंड में दे दिया। हाथी ने उसमें क्या किया, हाथी की तरह सुंड में लेकर पैरों में लिया और कुचल दिया उसको। तो दुर्वासा ने श्राप दिया कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, जिस ऐश्वर्य में इतने तुम लिप्त हो चुके हो। उस समय बलि महाराज ने आक्रमण करके इंद्र का राज्य छीन लिया और इंद्र भिखारी बन गए। ऐसे कई बार इंद्र के दरबार में इंद्र लोक का भोग लेते हुए अपराध किए इंद्र ने। है तो भगवान का भक्त वो, लेकिन जब भक्त भी ऐश्वर्य के अंदर अपने आप को लिप्त कर देता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है और वो भगवान को भी नहीं पहचानता। उस बालक को उन्होंने एक नटखट बड़बड़ करने वाला बालक समझा और ऐसा आदेश दिया कि मेरी पूजा कैंसिल करने का साहस करता है ये बालक, उद्दंड बालक, और इस बालक की बात सब ब्रज सुनते हैं, पूरा ब्रज ही नष्ट कर दूंगा, एक एक जानवर यहां का नष्ट होना चाहिए, एक एक जीव नष्ट होना चाहिए, बालक उसके माता पिता सारे ग्वाल बाल नष्ट होने चाहिए, सारा ब्रज नष्ट होना चाहिए। समुद्र बादल को भेज दिया, कितना गर्व होगा उसको, देखो जो प्रलय काल में 14 लोगों का नष्ट करने के लिए बादल भेजते हैं, वो बादल उसने एक छोटा सा गांव ब्रज नाम का उसको 84 कोस का हिस्सा जो है भूमि उसको नष्ट करने के लिए भेज दिया। इतना इतनी माया और इतना अज्ञान से आदमी भर जाता है जब उसको धन या किसी लालसा में फंस जाता है वो। और लालसाएं कई प्रकार की होती है, कोई धन की होती है, कोई शरीर के ऐश्वर्य की होती है, सुंदरता की होती है, हाँ कोई शरीर की भोग की होती है, फिर पद की भी एक लालसा होती है, पद का अधिकार होता है, अधिकार में आदमी उसको नशा चढ़ता है, पावर, हाँ ऐसे कहते हैं पावर जो होता है ना वो पूर्णता से आदमी की मति को नष्ट कर देता है, पावर करप्ट्स एंड पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली ऐसे कहा गया है। तो इंद्र ये सभी प्रकार के प्रलोभन से आदि थे और बार बार हम देखते हैं यहां पर ऐसा एक वर्णन आता है। देखिए ये जो कथा है ना जो गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, ये उनके दो नायक है इसके अंदर, एक स्निग्धकांत और मधुकांत, हाँ जो भगवान के सखा हैं और भगवान द्वारका से उनको भेज रहे हैं बार बार इन्फॉर्मेशन देकर क्या क्या कथा हो रही है। तो जब ये सुनते हैं सब कथा स्निग्धकांत के और मधुकांत के मुख से, ये कहाँ पर कथा बताई जा रही है, वृंदावन में नंदगांव में नंद बाबा और यशोदा के लिए कहानी बताई जा रही है। तो बहुत लोग बैठे उसके अंदर, केवल नंद बाबा नहीं बैठे हैं, तो जो ब्रजवासी बालक बैठे हुए हैं वो क्या कहते हैं बताएं ये कथा सुनकर, अरे ये इंद्र जो है ये बार बार कीचड़ में क्यों गिरता है। और वो कहते हैं कितनी बार भगवान को इसको निकालकर साफ करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स कृष्णा हैज टू वॉश हिम अप अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम ही फॉल्स इन द मड ऑफ अपराध। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का गर्भहरण किया, पारिजात को वृक्ष पर लाया और फिर भगवान फिर गरुड़ में ऊपर बैठकर सत्यभामा को लेकर द्वारका लौटे। और उसके बाद में उन्होंने पहले 8 तो महल बनाए दिए थे, उसके बाद 16,100 महल और बनाए उन्होंने विश्वकर्मा की सहायता से, और 16,100 रूप में विभाजित हो गए वो, और हर एक महल में उन्होंने दूल्हा बनकर हर एक कन्या के साथ विवाह किया। 16,108 शादियां हो रही है एक साथ में, बड़े धूमधाम से सब देवता लोग आए, सभी लोगों ने दुंदुबियां बजाई। और सबका विवाह संपन्न हुआ। इसके बीच में जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान स्वर्ग से अमरावती से लौट रहे थे पृथ्वी पर, तो ऑन द वे बैक वो स्वर्ग के जो अलंकार होते ना स्वर्ग जो रत्न होते हैं वो अलग निकालकर वो अपने खास स्त्री दूतों के माध्यम से ब्रज में भेजते हैं, और राधा रानी और गोपियों के लिए अनेक प्रकार के रत्न और मालाएं भेजते हैं, स्वर्ग के अलंकार भेजते हैं, और उसके साथ में एक गुप्त पत्र भेजते हैं लौटते हुए। और पत्र में क्या लिखा है, गोपियों को खत लिखते हैं, वो कहते हैं कि द्वारकावासी और मथुरा वासियों को प्रसन्न करने के लिए, मेरे माता वसुदेव और देवकी माता माता और पिता को प्रसन्न करने के लिए मैंने ये कई प्रकार के अवतार लिए हैं, इतने मैं अपने रूपों को विभाजित कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मेरे हृदय में केवल आपको ही स्वीकार किया है, आपके ही रूप को मैं मेरी पत्नियों को रूप में देखता हूँ। इसका मतलब यह है, वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नियाँ ही आपका ही स्वरूप हैं, मैं उसी प्रकार से उनको देखता हूँ, और मैंने इतने रूप धारण किए हैं केवल उनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मेरा हृदय आपके साथ में है, मैं हमेशा आपके विरह को अनुभव करता हूँ, और जब भी इन ऐश्वर्यों को देखता हूँ द्वारका के तो विरक्ति का अनुभव भी करता हूँ। और आगे कहते हैं कि मैं एक दिन ये सारे बंधनों को तोड़ दूंगा, द्वारका को छोड़ दूंगा और आपके पास आऊंगा, कृपा करके तब तक आप जिंदा रहना जब तक मैं सारे बंधनों को तोड़कर लौट ना आऊं। फिर जो गोस्वामी इसको इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं, एक पत्र है जो सारी गोपियों को जनरल लेटर लिखा हुआ है, उसमें राधा भी सम्मिलित है, लेकिन एक अंतर्भाव है इस पत्र का जो केवल राधा के लिए है। उसमें क्या कहते हैं, हे राधा, जो कुछ मैं द्वारका में कर रहा हूं उसको बाह्य लीला के रूप में आप समझना, मतलब इज ऑल एक्सटर्नल, ये केवल मैं जन सामान्य की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, लेकिन अंतरंग दृष्टि से वास्तविक रूप में मैं केवल आपके साथ ही लीला करने में व्यस्त हूं, आपके साथ ही मैं एक्चुअली लीला कर रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। फिर नारद मुनि आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है द्वारका में, तो वो जब प्रवेश करते हैं एक एक महल में तो रुक्मिणी देवी उनका स्वागत करती है, सत्यभामा स्वागत करती है, एक एक महल में जाके देखते हैं, वो देखते हैं कि हर एक महल में भगवान उपस्थित थे। ऐसे कहते थे कि जब वो अपनी सुधर्मा सभा में जाते थे तो उनके 16,108 जो रूप थे वो एक हो जाते थे और एक कृष्ण द्वारका सभा में पहुंचते थे, और दिन भर द्वारका सभा में काम करने के पश्चात जब शाम को लौटते थे और अपने जो उनका था ना कॉलोनी, गृहस्थ कॉलोनी जहाँ पर 16,108 महल थे, वहाँ पर जाकर वो 16,108 रूप में विभाजित हो जाते थे और अपने हर एक पंक्ति को संगत देते थे। कहीं झूला झूल रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं विश्राम फरमा रहे हैं, कहीं उनको रानियां पंखा कर रही हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भगवान ने हर एक अपने 16,108 पत्नियों को, हर एक पत्नी को 10 पुत्र और एक कन्या दिया। उनकी संख्या कुछ लाखों में होती है, श्री कृष्ण भगवान का इमीडिएट परिवार। और ऐसा कहा गया, नारद मुनि देखते हैं सब जगह पर कि उनकी पत्नियां जो थी, हर एक पत्नी उनकी पत्नी होने पर भी दासी के भाव में ही थी, और कभी उन्होंने समझा नहीं कि मैं उनकी पत्नी के लायक हूँ, कभी समझा नहीं कि मैं उनकी पत्नी होने के योग्य हूँ, हमेशा सोचती थी कि उन्होंने बड़ी कृपा से हमको ग्रहण किया है, इनकी कृपा है इसलिए हम उनकी पत्नी बने हुए हैं, लेकिन हम तो उसके लायक नहीं हैं। इसलिए पति आते ही उनके चरण धोया करती थी, उनके चरणों का अभिषेक किया करती थी, उसके बाद चरणों को हल्के हल्के हाथ से मालिश किया करती थी, कि जो दिन भर का उनका जो जैसे तथाकथित श्रम जो है राज दरबार चलाने का, उससे वो अगर थक गए हैं तो उनको मालिश करके फ्रेश किया करती थी, फिर उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाया करती थी, अपने हाथों से बनाती थी। ऐसे कहते हैं कि वो महल में हजारों दासियां थी, लेकिन किसी भी दासी का इंतजार न करते हुए हर एक रानी स्वयं भगवान की सेवा करती थी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में, और अपने हाथ से बनाए हुआ व्यंजन अपने हाथ से भगवान को खिलाती थी, अपने हाथ से पंखा भी किया करती थी, भोजन करने के बाद में मीठे मीठे गीत गाया करती थी और भगवान को अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें सुनाकर सुलाया करती थी, भगवान के साथ में हास परिहास करती थी, भगवान की पूजा करती थी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर एक कार्य करती थी। इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ में एक आदर्श गृहस्थ जीवन बिताया। और हर पत्नी को पर्याप्त समय दिया और हर पत्नी उनके साथ के संग में बड़ी संतुष्ट रहा करती थी। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट गृहस्थी धर्म का नियम है कि पति का ये कर्तव्य होता है कि वो हर प्रकार से कुशलता से बुद्धिपूर्वक अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट रखे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ। तो यहाँ पर भगवान के 16108 विवाहों की कथा समाप्त होती है। इसके बाद में जो प्राइम कथा है भगवान की वो है राधा रानी के साथ विवाह की। भगवान ने राधा रानी के साथ में 5 जगह विवाह किया है और राधा रानी ने भगवान का विवाह ललिता के साथ में भी किया है। ये एक विशेष बात है। तो ललिता देवी का गांव है ऊंचा गांव, वहां पर भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी के दिन भगवान का विवाह राधा रानी बड़े प्रेम से ललिता के ऊपर जो उनका प्रेम है उसकी वजह से ललिता का विवाह भगवान से करती है। वो भगवान का विवाह स्वयं रचाती है। वो उसका पूरी योजना पूरा अरेंजमेंट भगवान का विवाह का ललिता के साथ राधा रानी स्वयं करती है। विवाह के पश्चात उनको झूले में बिठाती है और स्वयं झूला झुलाती है दूल्हा दुल्हन का। ये ऊंचे गाँव में आज भी वो ब्याहुला होता है। भाद्रपद त्रयोदशी के दिन बड़ा मेला लगता है और सभी ब्रजवासी सभी गाँवों से ऊंचे गाँव में आते हैं और ललिता देवी का भगवान के साथ ब्याहुला का उत्सव मनाते हैं। और भगवान का राधा रानी का विवाह जो है वो 5 जगह हुआ है। एक विवाह जो नंदगांव में हुआ है, एक विवाह बरसाने में हुआ है, एक विवाह संकेत में जो नंदगांव बरसाने के बिल्कुल बीच में है, एक विवाह वृंदावन में बंसीवट पे हुआ है और एक विवाह भांडेरवन में हुआ है। तो जो बंसीवट का विवाह जो है ऐसे कहा है कि मानसरोवर वो जगह है जहाँ पर एक बार राधा रानी रास में जब आई तब भगवान रास में लेट आए तो राधा रानी बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई और मान कर गई, वहाँ से निकल गई और जमुना पार करके उस सरफ जाकर रोने लगी और उसके मान भरे क्रोध भरे अश्रुओं से एक बड़ा सरोवर तैयार हो गया। उसका नाम है मानसरोवर, जहाँ पर शंकर भगवान ने स्नान किया था और गोपी का शरीर प्राप्त किया था और वो गोपेश्वर महादेव बने थे। वो मानसरोवर पर भगवान ने राधा रानी और गोपियों के साथ में होली का लीला किया और उस होली लीला के बाद में मानसरोवर के बाद में भगवान बंसीवट पे आए और बंसीवट पे उनका विवाह हुआ कृष्ण के साथ राधा रानी का। संकेत में जब भगवान का राधा रानी के साथ विवाह हुआ तो भी ब्रह्मा जी ने किया पुरोहित के रूप में और इसका विस्तार वर्णन में नहीं मिलता है, लेकिन भांडेरवन में जो विवाह हुआ उसका विस्तार में वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग पुराण में मिलता है, गर्ग संहिता में मिलता है। तो ये लीला ऐसी है कि एक बार छोटे से नंदलाल कृष्ण को लेकर नंद महाराज भांडेरवन में प्रवेश करते हैं और जैसे बालक को लेकर घूम रहे गोद में अचानक क्या होता है वो झंझावात शुरू होता है, सन 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 करके हवा बहने लगती है, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, सब धूल भरा अंधकार चारों ओर छा जाता है, आकाश में मेघमाला से आकाश ढक जाता है, सब जगह अंधेरा छा जाता है और भयंकर ध्वनि होने लगती है। इससे नंद महाराज भयभीत हो जाते हैं, सब जगह अंधकार का साम्राज्य फैल जाता है और बहुत घनघोर वर्षा का वातावरण निर्माण होता है। इस भयंकर डरने वाले वातावरण से श्री कृष्ण भगवान जो बाल रूप में अभी लीला कर रहे हैं ना, तो नंद महाराज के गले लिपट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उनका रोना सुनकर और भाई नंद महाराज भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं मैं अभी कैसे यहाँ से तुरंत चला जाऊँ, कैसे यहाँ पर भवन में पहुँचाऊँ। उतने में सर्वगुण संपन्न सौंदर्यवती जिसकी आभा अनंत कोटि सूर्य की तरह है, विद्युल्लता की तरह है, ऐसी राधा रानी पूरे श्रृंगार के साथ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। तो तुरंत वो वंदन करते हैं उनको नंद महाराज। वो कहते हैं, हे राधे, हे वृषभानु नंदिनी, गर्ग मुनि से मैंने आप दोनों का पूरा रहस्य जान लिया है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रियतम प्राणवल्लभा हैं, ये आपके प्राणवल्लभ हैं, आप उनकी प्राणवल्लभा है और आपका चिरंतन प्रेम का संबंध है। ये रहस्य मैंने गर्ग मुनि से जान लिया है। मैं आपके चरणों में आपको वंदन करता हूँ और परम भगवान श्री कृष्ण के जो मेरे बालक रूप में लीला कर रहे हैं उनकी भक्ति निरंतर प्राप्त होती रहे, यह आपसे वरदान मांगता हूँ। ऐसे करके वो इस बालक को राधा रानी के गोद में देते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं, उसको आशीर्वाद ग्रहण करके कहते हैं कि किसी भी तरह से इस भयभीत बालक को भवन में पहुंचाने की व्यवस्था करना, और खुद चले जाते हैं। राधा रानी बालक को अपने गोद में लेती है और भांडेरों में प्रवेश करती है। जब भांडेरों में प्रवेश करती है तो अचानक कृष्ण जो है 16 साल की उम्र में प्रकट हो जाते हैं। अचानक वहां पर विवाह मंडप तैयार होता है। श्री वृंदावन धाम जो है अपने 6 ऋतुओं के सारे ऐश्वर्य के साथ में प्रकट हो जाता है। वृंदावन धाम में तो है ही वो, लेकिन वृंदावन धाम इस दिव्य प्रसंग को और सुशोभित करने के लिए अपने 6 ऋतुओं को बेस्ट अवस्था में लेकर वहां प्रकट हो जाते हैं। श्री गिरिराज अपने पूरे अलंकार के साथ, क्या गिरिराज के अलंकार है, हाँ, गिरी कंदर फल फूल रत्न माणिक जड़ी बूटी सरोवर झरने, इन सारे दिव्य चमकते हुए अलंकारों के साथ गिरिराज जी अपने सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जमुना देवी प्रकट हो जाती है, उनके किनारे मणि कंचन से बने हुए हैं, शतदल सहस्त्रदल कमल खिले हुए हैं जो प्रकाशमान है। ऐसे सारे ऐश्वर्य के साथ में जमुना देवी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करती है। फिर भूदेवी अपना ऐश्वर्य प्रकट कर देती है, दिव्य भूदेवी। दिव्य भूदेवी वृंदावन धाम यमुना गिरिराज गोवर्धन सब अपने अपने रूप का प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण अपने युवा रूप में प्रकट होते हैं पूरे ऐश्वर्य के साथ में, और वो जो प्रकट हुआ है दिव्य प्रकाशमान विवाह मंडप, इसमें राधा रानी का हाथ करतल अपने हाथ में पकड़ते हुए प्रवेश करते हैं उसके अंदर। जैसे प्रकट होते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, एक दिव्य रत्नों से भरा हुआ प्रकाशमान सिंहासन वहां प्रकट हो जाता है। उसके बाद सत्यलोक में ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं सत्यलोक से, और भगवान के चरणों में आकर गिर जाते हैं। बोले, आपकी इच्छा से, आपके आदेश से मैं यहाँ प्रकट हो गया हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपका विवाह होना है और मैं इसमें पुरोहित की सेवा करूँगा। तो ब्रह्मा जी यज्ञ पुरोहित करते हैं, और ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान का स्तुति पाठ भी करते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि आप जब वैकुंठनाथ बन जाते हैं तो यही राधा रानी लक्ष्मी के रूप में वहाँ पर आती है। जब आप राम के रूप में आते हैं तो यही देवी सीता के रूप में आती है। जब आप विष्णु बनकर आते हैं तो ये कमला बनती है। जब आप यज्ञ पुरुष बन जाते हैं तो ये दक्षिणा देवी के रूप में प्रकट होती है। जब आप नरसिंह भगवान बन जाते हैं तो ये रमा देवी बनकर आती है। जब आप नर नारायण के रूप में ऋषि बनकर तपस्या करते हैं तो ये परम शांति के रूप में प्रकट हो जाती है। जब आप परब्रह्म बन जाते हैं तो ये तटस्था शक्ति बनकर आती है। जब आप काल बंद कराते हैं तो ये प्रधान प्रकृति बंद कराती है, और जब आप महत्त्व बंद कराते हैं तो ये सगुणा माया बंद कराती है। ये आपकी चिरंतन सखी है, चिरंतन प्रियतमा है, जहां जहां भी आप जाते हैं अलग अलग रूप में आपका साथ देती है। और मेरा ये भाग्य है कि आज आप दोनों का विवाह करने का भाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए यज्ञ पुरोहित बन जाते हैं, और यज्ञ पुरोहित बनकर वैदिक विधानानुसार भगवान का राधा रानी का पाणी ग्रहण कराते हैं। उसको क्या कहते हैं, कन्यादान। हाँ, पहले पाणी ग्रहण यानी उसको कहते हैं गुजराती में हस्तमिलाप। वो शादी में एक विवाह विधि होता है, उसमें पति का दाहिना हाथ, हाथ में पत्नी का दाहिना हाथ देते हैं, उसके फूलों की लड़ियों से, रत्नों की लड़ियों से उसको बांध देते हैं और कई प्रकार के मंत्र बोलकर कन्यादान विधि करते हैं, लेकिन उसको हस्तमिलाप भी कहते हैं। तो यज्ञ को, अग्नि को प्रज्वलित करके ब्रह्मा जी अग्नि की 7 दक्षिणा करवाते हैं, फिर 7 मंत्र बुलवाते हैं उनसे, और श्री जी का हाथ श्री कृष्ण भगवान के वक्ष पर रखते हैं और कृष्ण का हाथ राधा रानी के कंधे पर रखते हैं, ऐसे पीठ पर, पार्श्व भाग पर। आप सोच सकते हैं, कृष्ण भगवान का हाथ राधा रानी के कंधे पर और राधा रानी का हाथ कृष्ण के छाती पर, और फिर वो अनेक मंत्र उच्चारण करते हैं। उसके बाद में पारिजात के केसर यानी कि पोलेंस, पारिजात वृक्ष के पोलेंस, केसर के माला बनी हुई है जो आजानुलंबित है, यानी कि जो घुटने तक लंबी है, जो गले में पहनाएंगे तो घुटने तक लंबी हो सकती है, ऐसी माला वो राधा रानी के हाथ में देते हैं और वो कृष्ण के गले में पहनाती है। फिर कृष्ण भगवान भी ऐसे ही पारिजात की माला राधा रानी को पहनाते हैं, और उसके बाद वो दोनों को अग्नि को प्रणाम करवाते हैं। फिर पांच मंत्र बोलते हैं और ब्रह्मा जी राधा रानी के पिताजी बनकर बहुत सुसंवित वैदिक विधान से कन्यादान करते हैं कृष्ण भगवान को। उस समय देवताओं से आकाश से वृष्टि होती है, पुष्प वृष्टि करते हैं देवता लोग। देवांगना जो देवताओं की पत्नी है वो नृत्य करने लगती है और गंधर्व जो है वो मांगलिक गीत गायन करते हैं। बार बार जय जयकार सुनाई पड़ता है, मृदंग वीणा वेणु नगाड़े दुंदुभी सब जगह बजने लगती है। इस प्रकार से भगवान का विवाह संपन्न होता है। तो भगवान जो अभी दूल्हा बने हुए ना, ब्रह्मा जी से पूछते हैं दक्षिणा में क्या दे आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके जुगल जोड़ी के चरणों में मेरी प्रेम भक्ति बनी रहे, ये वरदान दक्षिणा के रूप में मांगते हैं और भगवान के चरण छूते हैं। भगवान भी उनके चरण छूते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है उस समय, और वो भगवान के रूप में भगवान के चरण छूते हैं और भगवान उनको दक्षिणा देते हैं उस प्रेम भक्ति का। बड़े ही आनंद में, बड़े ही आनंद विवर होकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अभी इसमें कोई था नहीं ना, ये बहुत प्राइवेट विधि है, इसमें कोई था नहीं, ये गुप्त रूप में विवाह हो रहा है, केवल ब्रह्मा जी हैं और कोई नहीं उसके अंदर, दूल्हा दुल्हन ना ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी चले गए तो फिर ये दुकान दोनों एकांत में आ गए। तो ये फिर वहां पर एक दिव्य निकुंज प्रकाशमान प्रकट होता है। निकुंज का अर्थ क्या होता है? ऐसा वन जो चारों तरफ से बंद है, केवल उसको एक ही गेट है। आकाश के स्थल पर भी वो बंद है, देवता लोग भी अंदर देख सकते नहीं कि ऊपर क्या, ऊपर से क्या चल रहा है। ऐसे दिव्य प्रकाशमान निकुंज में ये दोनों प्रवेश करते हैं, कोई सखी सखियां कोई नहीं, नए नए दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं और प्रवेश करते हैं। उसके बाद में राधा रानी अपने हाथ से बहुत दिव्य भोजन बनाती है और फिर कृष्ण को उसको परोसती है। दोनों बैठकर भोजन करते हैं, फिर तांबूल प्रदान करती है, फिर भगवान और राधा रानी तांबूल खाते हैं। उसके बाद में कुंजों में प्रवेश करते हैं, उसके बाद लुका छुपी खेलते हैं। कभी इस पेड़ के पीछे राधा रानी छुप रही है तो कृष्ण उसको ढूंढ के निकालते हैं, फिर कृष्ण छुप जाते हैं, राधा रानी ढूंढ के निकालती है, फिर गोल गोल घूमते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, दूसरों का पीछा करते हैं। उसके बाद में हास प्रयास करते हैं, विनोद करते हैं और उसके बाद में एकांत रास दिला करते हैं, ओनली टू ऑफ देम। और केवल भांडीरवन में नहीं, भांडीरवन के गली गली में जाकर करते हैं, फिर वृंदावन में पहुंचते हैं, वहां पर एकांत रासलीला करते हैं, वृंदावन में गोवर्धन के कंदरों में गुफाओं में जाकर रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं। तो उसके बाद में जमुना में प्रवेश करते हैं, सब दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं उसी भेष में प्रवेश कर रहे हैं और जमुना में प्रवेश करते हैं और जल विहार करते हैं। तो जमुना में उस समय इतना आनंद हो रहा है जमुना जी क्योंकि मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, दर्शन कर रही है वो भगवान के एकांत लीला का। तो जमुना जी सहस्त्र दल शतदल कमल वहां प्रकट कर रही है, तो उसमें से एक शतदल कमल जो है वो राधा रानी लेती है, तो कृष्ण उसके हाथ से छीन लेते हैं उसको। तो राधा रानी कहती है मेरे कमल दल को मुझे दे दो, तो राधा रानी कृष्ण का बांसुरी छीन लेती है। फिर कृष्ण कहते हैं कमल दल दे दो, तो राधा रानी कहते हैं बंसी दे दो, मतलब उल्टा कहा मैंने, कृष्ण कहते हैं बंसी दे दो, तो राधा रानी कहते पहले कमल दल दे दो, फिर वो कमल देते हैं उसको वापस और राधा रानी बांसुरी वापस करती है। और इस तरह से फिर वो वापस मिली हुई बंसी से भगवान बंसी बजाते हैं और फिर कृष्ण भगवान लास्ट लीला है ये विवाह होने के बाद में। सारा नित्य जमुना विहार, जल विहार, हास परिहास, छीना छपटी, लुका छुपी करने के पश्चात में कृष्ण भगवान दोबारा राधा रानी का नए सिरे से श्रृंगार करते हैं, बड़े विस्तार से श्रृंगार करते हैं, हाथों में पैरों में मेहंदी लगाते हैं, बालों में अलंकार लगाते हैं, फूल लगाते हैं, कमर में, गले में, हाथ में, बाजू में, सब जगह अलंकार लगाते हैं, मुख में पत्रावली की व्यवस्था करते हैं, रचना करते हैं। और पूरा श्रृंगार पूरा होने के बाद में राधा रानी सोचती है कि मैं भी आपका श्रृंगार करूंगी। और जैसे ही वो दूल्हा कृष्ण भगवान का श्रृंगार करने के लिए आरंभ करने का प्रयास करती है तो अचानक वो रोते हुए बालक बन जाते हैं, भयभीत बालक, जो भयभीत अवस्था में नंद महाराज ने उनको राधा रानी के गोद में दिया था, उस रूप में जाकर जो जो रोने लगते हैं, राधा रानी को बड़ा दुख होता है। उस समय आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा उनका श्रृंगार करने की जो तमन्ना है, इच्छा है, वो भविष्य में भगवान पूरी करेंगे, अभी उनको भवन में जाकर लौटा दो। तो फिर रोते हुए बालक को लेकर राधा रानी नंद भवन में पहुंचती है और वहां पर नंद बाबा पहुंच चुके होते हैं और बहुत भयंकर वर्षा हो रही है, हाँ यहाँ तो विवाह हो रहा है, उस पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन भाई लीला में क्या हो रहा है, सब जो घनघोर वर्षा हो रही है और नंद बाबा पहुंच गए हैं और नंद बाबा यशोदा दोनों इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बालक अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। और इस वर्षा में फिर राधा रानी उस बालक को लेकर, रोते हुए बालक को लेकर नंद भवन पहुंचती है, यशोदा के हाथ में सुपुर्द करती है। यशोदा इतनी प्रसन्न हो जाती है कि तू कितनी सद्गुण संपन्न है, कितनी शालीन और कुलीन है, मेरे भयभीत बालक को तुम मेरे हाथ में पहुंचा रही हो। उसका बड़ा सत्कार करती है, गुणगान करती है, उसको भेंट देती है, उसको गले लगाती है, उसको आशीर्वाद देती है, उसका मस्तक चूमती है। और इस प्रकार से स्तुति करने के बाद में, सत्कार करने के बाद में राधा रानी अपने घर चले जाती है। राधा रानी की, श्री कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से 3,16,108 राधा रानी और ललिता जी का विवाह का प्रसंग आज हमने वर्णन किया। अभी 12:20 बाकी है, मुझे ध्यान दिखाई नहीं मैंने उस तरफ, कोई बात नहीं। संक्षेप में कृष्ण भगवान के जन्म की लीला करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कंस के भय से पृथ्वी गाय बनकर भगवान के पास जाती है, फिर भगवान को आश्वासन देते हैं कि हम आएंगे और अवतार लेंगे, अपने सारे देवताओं को आदेश देते हैं कि आप जाइए और जगह जगह पर, स्थान पर, योग्य जगह पर अवतार लेकर तैयार रहिए, मैं आने वाला हूँ। फिर यथावकाश जो है, आप जानते हैं कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी को बंद कर देते हैं। वसुदेव का विवाह जब होता है तब देवकी दुल्हन बन के जा रही है, कंस सारथी बने हुए हैं। उस समय आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, तू जिस बहन का रथ खींच रहा है उसके 8वें बालक से तेरा वध होने वाला है। तो अचानक प्रेम खत्म हो जाता है और हाथ में तलवार लेकर, बाल पकड़कर वो उसका सर काटना चाहता है। फिर वसुदेव बड़े शांति समझाते हैं उसको, लेकिन वो समझ में नहीं आता है उसको। वसुदेव एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि मेरे पत्नी के, आपकी बहन के 8वें पुत्र के द्वारा आपको भय है, लेकिन बाकी पुत्रों से तो भय नहीं है, ना पत्नी से भी भय है मेरे। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हर एक होने वाले पुत्र को आपको सुपुर्द करूँगा, आप जो चाहे कर लेना। और वसुदेव बड़े प्रसिद्ध थे सत्यवचनी के रूप में। तो वसुदेव के मुख से ये वचन आया है ये समझकर तुरंत तलवार नीचे आती है, उनको छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही पहला पुत्र होता है वसुदेव, उसका नाम रखते हैं कीर्तिमान, और उसको लेकर वसुदेव दरबार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे कंस, मैंने वादा किया था ये पहला पुत्र आपके लिए सुपुर्द है। तो कंस को बड़ी दया आती है, कितना सत्यवचनी आदमी है ये, ऐसा कोई कर सकता है क्या, अपने पहले बालक को लेकर आ रहा है सुपुर्द करने के लिए, चाहे मैं उसको मार दूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं, मुझे आपके पहले बालक से भय नहीं है, ले जाओ उसको आप। तो बड़े शांति से, आनंद से वो उसको घर ले जाते हैं। देवकी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और नारद मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं कंस के दरबार में। वो कहते हैं, ये लो कमल को पकड़ो अपने हाथ में, एक पंखुड़ी पकड़ो, उसको नंबर 1 कहो और गिनो अभी 8 नंबर, फिर अभी ये पंखुड़ी छोड़ दो, इस पंखुड़ी को पकड़ो और फिर 8 गिनो। तो कोई अलग पंखुड़ी 8 आती है। तो कहते हैं, मैं बता रहे क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब कुछ, ये देवता की, देवताओं की वामतो गति होती है, मतलब उल्टी गति होती है, आप जानते नहीं हो, ये वसुदेव आदि, वृषभानु आदि सब देवता लोग हैं, ये सभी लोग देवताओं के मैसेंजर है, सब अपनी अपनी जगह पर जन्म ले चुके हैं। ये सारी गोपियां जो हैं, सारी जो कन्याएं यहाँ पर मथुरा में निवास कर रही है, सभी लोग देवताओं की स्त्रियां हैं, देवांगनाएं हैं, ये आपके वध करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये पहला कौन सा बालक है, 8वां कौन सा बालक है, कोई गिनती नहीं होती इसकी, इसलिए आप रिस्क मत लो। तो तुरंत जाते हैं वसुदेव के जहाँ पर निवास स्थान है, उस कीर्तिमान नाम के बालक को पत्थर पटक कर उसको मार देते हैं। उसके बाद 10,000 सैनिकों का पहरा, सशस्त्र उनके घर पे लगाते हैं। उसके बाद में उनको साखल भी लगा देते हैं कि कहीं जा नहीं पाइए। हर एक साल के बाद एक एक बच्चा होता है, 6 बालकों को पत्थर पर मार कर वो पीस देता है। 7वें बालक के रूप समय जब वो गर्भवती होती है तो अचानक उसका गर्भ गायब हो जाता है। सब मथुरावासी दुख करते हैं कि गर्भपात कैसे हो गया, गर्भपात कैसे हो गया, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु के रूप में माया देवी को बुलाते हैं, दुर्गा देवी को बुलाते हैं और कहते हैं मेरा अनंत शेष अवतार, मेरा प्रथम लीला अवतार जो है वो शेष रूप में अभी देवकी के गर्भ में स्थापन होकर हो रहा है। तुम्हारा काम है कि उसको संघर्षित करके उसको रोहिणी के गर्भ में आपको स्थापन करना है। तो इसकी वजह से दुर्गा देवी की शक्ति के प्रभाव से इस गर्भ को वो संकर्षण करते हुए रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर देती है। उस समय रोहिणी भी गर्भवती होती है, उसके गर्भ में मूल बलराम जी विराजमान होते हैं और ये संकर्षण अनंत शेष जो है उसमें जाकर विलीन हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। और जब जिस दिन माया देवी ने इस गर्भ को वहाँ विस्थापित कर दिया, उसके ठीक 5 दिन के बाद में बलराम जी का जन्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, श्रावण शुद्ध सप्तमी के दिन वो गर्भ को हरण किया गया यहाँ से वहाँ, और श्रावण पूर्णिमा के दिन बलराम जी का जन्म हुआ। वे व्यास देव आते हैं बलराम जी का जन्मदिन के समय पे, कई ऋषियों को लेकर आते हैं, बड़ा गौरव करते हैं अनंत शेष का। उसके बाद में 8वें दिन श्रावण वद्य अष्टमी, आचार्य वर्णन करते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र होते हुए, हर्षण योग होते हुए, वृषभ लग्न होते हुए, आधी रात के समय चंद्रोदय की बेला में श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। उसका वर्णन किया गया है, पृथ्वी जो है वो अपने आप को एक दुल्हन की तरह सजाती है अपने पति को स्वीकार करने के लिए। वो सोच रही है कि जिनके चरण कमल साधुओं को अनंत जन्मों तक, अनंत हजारों साल तक तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होते हैं, वो चरण कमल मुझे शरीर के ऊपर अभी घूमने वाले हैं, अलंकार के रूप में मैं उनको ग्रहण करने वाले हूँ, उनके चरण कमल मेरा अलंकार होंगे, इस भाव से अपने आप को सुशोभित कर रही हो। इस प्रकार से पृथ्वी का विचार चल रहा है। सारी नदियां स्वच्छ हो जाती है, सरोवर जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं, ये जान करके कृष्ण भगवान अपनी हमारे अंदर कभी स्नान करने आएंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे और अपने गायों को भी जल पिलाने के लिए आएंगे। रात के समय सहस्त्र दल छत दल कमल खिलते हैं, कमल कभी रात को नहीं खिलता है, सूर्यास्त के बाद में बुझ जाता है वो, फिर दोपहर सुबह ही खुलता है। लेकिन बीच रात में, अंधेरे रात में भगवान के जन्म के समय सब नदियों में सरोवर में जलाशय में कमल खिल गए। हवा जो है वो उन कमल दल के पूके सरों को लेकर शीतल मंद मंद वायु बिंदु को, जल बिंदु को लेकर सब जगह बहने लगी और सबको प्रसन्न करने लगी। शीतल मंद सुगंधमय हवा सब जगह बहने लगी, सब वातावरण पवित्र हो गया, आनंदमय हो गया। वृक्ष जो है वो फलों फूलों से भर गए। रात के समय कोई फूल नहीं खिलते पेड़ पर, लेकिन उस समय रात में सारे वृक्षों पर जितने भी फूल वाले वृक्ष थे सभी अपने अपने फूल खिलाकर समृद्ध हो गए। सारे पक्षी, आप जानते हैं कोई पक्षी रात को आवाज़ करते हैं? सूर्यास्त के बाद कुछ समय के बाद आवाज़ बंद हो जाता है उनका, लेकिन जब कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है सारे पक्षी ऐसे सुंदर, क्या कहते हैं, मेलेडी, हाँ, कोई नॉइज़ नहीं हो रहा है उसका। कोयल भी गा रही, तोता भी गा रहा है, मोर भी गा रहे हैं, सब पक्षी गा रहे हैं अपने सुंदर सुंदर आवाज़ में, और एक सुंदर ध्वनि, एक कंसर्ट आकाश में उत्पन्न हो रहा है और ध्वनि से सबको प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। फिर सब पक्षी नृत्य करते हैं, मोर नृत्य करते हैं, कोयल गाती है, साधुओं के मन जो है दो त्रस्त थे ना, कंस ने सबको आदेश दिया था कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई वेद के मंत्र नहीं उच्चारण करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई अग्निहोत्र नहीं करेगा, और सब लोग भयभीत थे। मथुरा में यज्ञ बंद था, कोई यज्ञ करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अचानक ये सारे भयभीत जो साधु थे भय मुक्त हो गए और रात के समय अग्नि जलाकर यज्ञ करने लगे। उनके मन प्रसन्न हो गए, वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने लगे, और उस समय सभी जो चर अचर वस्तुएं हैं वो आनंद से भर गए। आकाश में बादल इकट्ठा हो गए और मंद मंद ध्वनि, गर्जना करते हुए नहीं, गड़गड़ाहट करते हुए नहीं, मंद मंद प्रसन्न ध्वनि करते हुए मंद मंद बौछार करने लगे। प्लेजेंट साउंड स्पोरिंग वाटर, विद्याधर की स्त्रियां, स्वर्गलोक की विद्याधर की स्त्रियां नृत्य करने लगी, किन्नर गंधर्व अप्सराओं के साथ गाने नाचने लगे, शुभ गीत गाने लगे, सिद्ध चारण उन्होंने पवित्र प्रार्थनाओं को कहना आरंभ कर दिया, सारे साधुगण जो है उन्होंने देवताओं के साथ में पुष्प वृष्टि करना आरंभ किया, साधुगण, ऋषिगण और देवता अपने विमान में बैठकर, विमान में फूल भर भर कर आकर मथुरा में कंस की नगरी में फूल का वर्षाव कर रहे हैं। पुष्प समाप्त हो गए, विमान वापस जा रहा है, फिर पुष्प भर के लेके आ रहा है, फिर लगातार रात भर उन्होंने मथुरा नगरी पर पुष्प वर्षाव किया। क्योंकि ऐसा है कि देवताओं की नगरी में केवल फूल खिलते हैं, वो मुरझाते नहीं हैं, तो बहुत स्टॉक होता है उनके पास। जब भी कुछ आनंद का घटना होती है देवता पुष्पवृष्टि करते हैं। तो भगवान के जन्म के समय रात भर उन्होंने पुष्पवृष्टि किया। और कौन से फूल थे वो? पारिजात, मालती, मंदार, ऐसे सुगंधित फूल थे। अन्य देवता जो अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं वो मृदंग, दुंदुभी, भेरी जैसे वाद्य बजाने लगे। सब जगह जय जयकार दस दिशाओं में होने लगा। दस दिशाएं आनंद से भर गई, निर्मल हो गई, आकाश स्वच्छ हो गया, सब तारका जो है वो विशेष प्रकाश से साथ चमकने लगे। उस समय चंद्रमा आधा था अष्टमी का, और भगवान का जो वंश था वो चंद्रवंश था। तो भगवान का जन्म हो रहा है चंद्रवंश में, तो चंद्र सोचता है कि मेरे वंश में मेरे भगवान का जन्म हो रहा है तो मैं क्यों आधा बनूं। तो अष्टमी के दिन चंद्र पूर्णिमा का चंद्र हो गया, पूर्ण चंद्र हो गए वो अष्टमी के दिन भगवान के स्वागत करने के लिए। सारे सितारे, तारे, ग्रह जो है वो ऐसे सुंदर योजना में आ गए। सबसे शुभ, सबसे पवित्र जो होता है ना स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, वो आकाश में पैदा हो गया। कैसा है ना, जब भगवान आते हैं तो सब व्यक्ति, सब जीव, सब चराचर, चर अचर वस्तु जो है वो अपना बेस्ट प्रकट करना चाहते हैं। जैसे हमारा होता है ना, हम गुरु महाराज को मिलते हैं तो एकदम अपना बेस्ट व्यवहार प्रकट करते हैं। जब गुरु महाराज को मिलते हैं तो सबसे बेस्ट 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 जो हमारे अंदर व्यवहार है वो प्रकट हो जाता है। बाकी हम लोग बाद में फिर कुछ कर लेते हैं, झगड़ा वगड़ा, लेकिन गुरु जी के सामने अपना बेस्ट जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रकट करते हैं। वैसे भगवान अवतार ले रहे हैं तो चर अचर के हर एक जीव और निर्जीव वस्तु जो है अपना बेस्ट प्रकटीकरण जो है प्रकट्य बता रहे हैं। तो सारे ब्राह्मण जो है यज्ञ आरंभ करते हैं। उस समय कृष्ण भगवान कंस की जेल में देवकी वसुदेव के सामने पूरे श्रृंगार के साथ प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की, कृष्ण जन्मोत्सव की। आठवें पुत्र के रूप में अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं। चार हाथ वाले भगवान, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हैं अपने चार हाथों में। उनके सर पे वैदुर्य मणियों से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है। उनकी कमल नयन आंखें हैं। उनका वर्ण जो है वो घने बादल की तरह है। उनके सुंदर बड़े हुए घुंघराले बाल जो है वो उसके कंधे पर बह रहे हैं। उनके छाती पर श्रीवत्स का मणि है। आप सब लोग चिंतन कीजिए, उनके छाती पर श्रीवत्स का मणि है, कौस्तुभ मणि भी है, और रत्नों की माला उन्होंने पहनी है। और जो फूलों की माला पहनी हुई है उसके अंदर हजारों जो मधुमक्खियां हैं वो गीत गुंजन कर रहे हैं उन फूलों के आसपास। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है जो तप्त कांचन विद्युल्लता के समान प्रकाशमान है। उनके कमर पर जो कमर कांचनी है वो भी विद्युल्लता के सरा चमक रही है। उनके गले में कमल की माला है। उनके बाजू बंद है, उनके कलाई बंद है, उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। और उस शरीर का जो दिव्य प्रकाश है वो सारे कंस के कारागृह को अंधकार में प्रकाशमान कर रहा है। और इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि मानो पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है बीच रात में। अभी वसुदेव और देवकी उनको देख रहे हैं। पूरा श्रृंगार किया हुआ है, ऐसा कि बालक जन्म लेता है, बालक निर्वस्त्र रोते हुए जन्म लेता है, और भगवान यहां पर पूरे श्रृंगार के साथ में, पूरे ऐश्वर्य, पूरे तेज के साथ में शस्त्र अस्त्र को धारण किए हुए दर्शन दे रहे हैं, अलग अलग मणियों का दर्शन देते हुए। तो इस तरह से हम सबको आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद भी समझाते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि भगवान का जन्म होता है वो दिव्य होता है, वो हमारे जैसा नहीं होता है, और उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। और जो व्यक्ति इन कर्म के दिव्यता को समझता है, इस जन्म की दिव्यता को समझता है, वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है। शरीर धारण करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला को प्राप्त नहीं होता है। जन्म कर्म चवे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म के और कर्म की दिव्यता को समझ लेना। जो भी व्यक्ति समझ लेता है दोबारा इस दुनिया में कष्ट लेने के लिए नहीं आएगा। तो हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं समझने का, हमारे मति में अभी तो प्रकाश नहीं है, फिर भी हम ये शास्त्र के आधार पर, आचार्यों की वाणी के आधार पर ये कोशिश कर रहे हैं समझने का कि कैसा इनका जन्म दिव्य है, कैसे ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति जो है, जब मैं जन्म लेता हूं मनुष्य के रूप में तो मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं और उनके जैसा ही ट्रीट करते हैं मुझे, लेकिन मैं सामान्य नहीं हूं, मैं सामान्य नजर आता हूं लेकिन हूं दिव्य। मेरी सारी कला, सारी जो कार्य है वो दिव्य होते हैं, वो समय के परे होते हैं, कालातीत होते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं। मेरी सारी कलाएं, सारे गुण, सारे कार्य जो है त्रिगुण के परे होते हैं। तो यहां पर वही लीला भगवान दिखा रहे हैं। फिर वसुदेव और देवकी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं और भगवान उनको जवाब देते हैं कि हे वसुदेव, हे देवकी, आप मेरे चिरंतन माता पिता हैं। सबसे पहले सूतपा और प्रश्नी के रूप में आपने हजारों वर्ष तपस्या किया था, केवल पेड़ से पड़े हुए पत्ते और वायु का भक्षण करके आपने तपस्या किया था, और मैंने आपको दर्शन दिया था विष्णु के रूप में, तब आपने कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र होना चाहिए। तब मैंने सोचा था कि मेरा समान तो मैं ही हूं और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। तब मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था उस अवतार में, उसके पश्चात आप अदिति और कश्यप मुनि बने, तब मैं उपेंद्र वामन देव के रूप में आपका आपके घर में जन्म लिया, और आज आप वसुदेव और देवकी के रूप में यहां पर विराजमान हो और मैं स्वयं परम पुरुषोत्तम विष्णु आपके सामने आपके पुत्र के रूप में प्रस्तुत हूं। आप कंस के भय से मुक्त हो जाइए। ऐसे कहते हैं कि जैसे ही वसुदेव ने भगवान का दर्शन किया उसका सारा भय मुक्त हो गया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में विचार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार से संपर्क करते हैं, सबसे पहला उसका लक्षण है कि हम भय से मुक्त हो जाते हैं। अगर सही रूप से हम उनका नाम ले रहे हैं, सही रूप से उनका शरण प्राप्त किया हमने, सही रूप से भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं अपने स्वामी के रूप में, तो उसका सबसे पहला लक्षण है कि हम सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी शरण ग्रहण करने के बाद भी भयभीत हो सकते हैं। वो कौन है? वो उनकी माता है, देव की माता। शास्त्र कहता है कि वसुदेव से भी अधिक देवकी का वात्सल्य श्रेष्ठ था। इसलिए भगवान का संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ वो दर्शन कर रही है, भगवान उनको अभय भी दे रहे हैं, निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। फिर भी उनके वात्सल्य के आवरण के वजह से उनको डर लग रहा है और अपनी प्रार्थना में विनती करती है, भगवान आप अपना ये रूप छुपाइए, आपका ये प्रकाश देखकर अगर कंस को पता चला तो वो आ जाएगा, आपका वध करने का प्रयास करेगा, इसलिए आप तुरंत एक बालक के रूप में आइए। तो अपनी माता के भाव को प्रतिसाद देते हुए भगवान ये सारा वार्तालाप करते हैं और एंड में वसुदेव को बताते हैं कि इस वार्ता के अंत में आप मुझे तुरंत ही जमुना पार करके नंद महाराज के पास पहुंचा देना और उनके पास जो कन्या का जन्म हुआ है उसको लेकर वापस आ जाना। उसके बाद तुरंत भगवान अपना जो षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप है उसको छोड़कर एक नन्हे से रोते हुए बालक के रूप में वहां प्रकट हो जाते और तुरंत देवकी उनको गोद में लेती है और उनको स्तनपान कराती है। उसी समय जो श्रृंखलाएं बंधी हुई है वो टूटकर गिर जाती है। प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम कृष्ण को अपना बना लेते हैं तो हमारे सारे बंधन की श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। जब कृष्ण हम अपना बना लेते हैं, हम कृष्ण के बन जाते हैं, कृष्ण को जीवन का केंद्र स्थान बनाते हैं, कृष्ण को जीवन का स्वामी बनाते हैं, अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, तो हमारे सारे बंधन की श्रृंखलाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब टूटकर गिर जाती है और हम लोग मुक्त हो जाते हैं और हमारा गंतव्य स्थान गोकुल बन जाता है। फिर आगे वर्णन आता है कि वो एक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, सब ताले टूट जाते हैं, जितने सैनिक पहरेदार बनकर बैठे हुए हैं एक एक ध्वनि पर ध्यान देकर खड़े हैं, वो कब बालक की आवाज आएगी और कब मैं कंस को खबर करूंगा। ओके, तो कुछ समय दी 5 मिनट के लिए। तो फिर जमुना को बाहर निकलकर जमुना के पार करते हुए आगे जाते हैं, जमुना जी बाढ़ में ऊपर आ रही है, उनके चरणों को स्पर्श करती है, रास्ता देती है, फिर वसुदेव जी टोकरी में भगवान को लेकर आगे जाते हैं, उनके अनंत शेष सहारा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही हम कृष्ण को अपना बना लेते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, तो अनंत शेष हमारी रक्षा करते हैं, भक्ति में आने वाले सारे संकट की रक्षा अनंत शेष करते हैं, हमारा साथ निभाते हैं सारी यात्रा में, जब तक हम गौलोक वृंदावन न पहुंच जाए तब तक बलराम जी महाराज हमारा सहायता करते हैं। तो फिर उनको वहां पहुंचाते हैं, उस समय एक पुत्र और एक कन्या वहां जन्म लेते हैं। तो वो पुत्र जो है उसमें देवकी कृष्ण जो ये लेके आ रहे हैं वो विलीन हो जाते हैं, और कन्या को लेकर वसुदेव मथुरा लौट के आते हैं। कथा यहाँ समाप्त करते हैं क्योंकि भगवान की अभी आरती होने वाली है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान जन्मोत्सव की जय हो, हरे कृष्णा।